भाई डॉन धन्यवाद। यह एक तरह से अचंभित करना है तो ठीक है, यह एक आपका धन्यवाद। जिस किसी ने भी इसे कहा है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन गीतों का आनंद उठा रहा था, ओह इसे सुनना पसंद करता हूँ। आप जानते हैं मैं अच्छे गीतों को गाए जाने को पसंद करता हूँ और मैंने इसमें से बहुत से सुने हैं जब मैं यहाँ पर आया। अक्सर मैं जब मैं यहाँ पर आता हूँ और चंगाइयों की सभा में या ऐसे ही कुछ होता है, मुझे अपने आप में एक प्रकार से अकेला रहना पड़ता है। और फिर वे लड़के इन टेपों को लेते हैं और फिर जब मैं घर जाता हूँ या ऑफिस में कुछ काम को करना होता है, फिर मैं बैठकर उन टेपों को बार बार सुनता हूँ और मैं वो हर एक बात को सुनता हूँ जिसे मैंने कहा है। और मैं भाई गैर होल्जर को यहाँ देख कर आज सुबह बहुत ही खुश हूँ, जो एक सुसमाचार के पुराने मित्र हैं। वे बहुत वर्षों से पहले इसी कार्य में थे, बीमारों के लिए प्रार्थना करने गए थे। शायद उनके बीमारों के लिए प्रार्थना करने के बारे में मैंने कुछ वर्षों पहले ही जाना था और सो यहाँ पर कुछ और लोग हैं जो मेरे नजदीकी मित्र हैं। मैंने पिछली रात को यहाँ ऊपर भवन पर जेफरसन विले से एक बड़े समूह को देखा और इसलिए हम बहुत ही खुश हैं। और मैं भाई यंग ब्राउन से मिला, मैंने कहा भाई जैक ने कहा उसका नाम यंग था और यह नाम उस पर सही बैठता है। जब उसने मुझे बताया कि उसकी आयु 65 या ऐसे ही कुछ वर्ष है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। वो तब से लेकर जरा भी नहीं बदले हैं जब वे पहली बार शेव रिपोर्ट पर थे। यही सही बात है, वो बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। तो ठीक है, परमेश्वर हमारे लिए भला है और मैं उन्हें पसंद करता हूँ। जिस तरह से उन लोगों ने आज सुबह को गीत को गाया, इसकी गहराई से यह तो कुछ वास्तविक था, कुछ तो जिसका कुछ अर्थ था। आप इसमें से पी सकते हैं। तब मैंने उन्हें गाते हुए सुना, मैं जोर जोर से गीत गाने से खुद को नहीं रोक सका, जो वहाँ लगभग कुछ तो भजन संहिता 23 के बारे में था। और फिर वहाँ पर आए और उन्होंने तभी उन तीनों ने इस सुंदर से गीत को गाया। बस इसके लिए सोचकर वहाँ पर इसके अंदर कुछ तो है आप जिसे महसूस करते हैं, जो आपके अंदर है, आपकी भावनाएं धड़कने लगती है यह जानकर कि परमेश्वर का राज्य नजदीक आ चुका है। यह सारी बातें जिसके बारे में हमने बात की है और इसके बारे में सोचते हैं, जो अब वो बात जगह लेने जा रही है। हम में से कुछ सो जाएंगे इससे पहले वो समय आए, लेकिन इससे हमारा पुनरुत्थान नहीं रुकेगा, क्योंकि ये हमें उस आगमन के सौभाग्य को देता है इससे पहले वे बदल जाते हैं। परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, फिर हम जो जीवित और बचे हुए हैं। क्या आपने पुनरुत्थान के क्रम पर ध्यान दिया? हम सब एक साथ उनके साथ उठा लिए जाएंगे, इससे पहले हम उससे मिले हम एक दूसरे से मिलेंगे। हम एक साथ उनके साथ उठा लिए उनके साथ ताकि प्रभु में हवा से मिलें। देखो वो परमेश्वर है और फिर जबकि वो आराधना को चाहता है, यही तो उसका स्वभाव है कि उसकी आराधना की जाए, क्योंकि वह परमेश्वर है और वह जानता है। यदि हम वहाँ पर थे, देखो अपनी आंखों को तिरछा करके देखते होंगे, देखते हैं कि दूसरा एक वहाँ पर है तो। लेकिन और तब तो ये आजादी से आराधना करने का सही तरीका नहीं होगा। जब हम वहाँ पर खड़े रहते हैं और हम जानते हैं हम एक दूसरे से पहले मिले हैं और एक दूसरे को अभिवादन किया है और तब उसके सामने होते हैं जो इस सब का कारण है और छुटकारे के गीतों को गाते हैं। जैसे भाई जैक ने इस बयान को बहुत सी बार किया है, जब दूत पृथ्वी को चारों ओर से घेरे होते हैं अपने सिरों को झुकाए हुए, ये नहीं जानते हुए हम किस बारे में बात कर रहे हैं। देखो क्योंकि वे कभी भी छुड़ाए नहीं गए, लेकिन हमें छुड़ाया जाना था। और कैसे हम उस राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु को ताज पहनाएंगे? मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ, मैंने कुछ भी कहने के बारे में नहीं सोचा है। मैं बस यहाँ पर ऐसे ही आया हूँ। मैं सोचता हूँ यह गवाही का समय है, केवल एक गवाही को देना है। और इसलिए आज रात प्रभु की इच्छा हुई तो मैं सोचता हूँ, मैंने अपने छोटे से कार्यक्रम की सूची को देखा है उन सभाओं के लिए, और मैं सोचता हूँ मैं आज रात को अपने संदेश को लेकर आऊंगा ईस्टर पर, या क्षमा कीजिए आज रात को धन्यवाद प्रदान करने का संदेश होगा। और फिर हम बाद में ले लेंगे, हो सकता है आने वाले हफ्तों में यदि प्रभु की इच्छा हुई तो बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। इस एक छोटी सी धन्यवाद प्रदान करने की जुबली के बाद हम चाहते हैं कि आप बाहर इकट्ठा हो जाएं, जो कि एक महान स्वभाव की यादगार है जिसे यहाँ पर शेवड़े पोर्ट में रखा गया था। कुछ एक लगभग 3 वर्ष पहले की बात है जब आपके पास इसके आने का प्रकाशन था और यहाँ उन सभाओं में परमेश्वर ने महान तरीके से आशीषित किया। और मैं भरोसा करता हूँ कि परमेश्वर निरंतर आशीष को देगा और यहाँ पर वे प्राण बचाए जाएंगे जब तक वो अंतिम नाम परमेश्वर की किताब में उस महान अभिलेख केंद्र की ऊंचाई पर है, जिन्होंने मसीह को एक उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है उसकी आत्मा से भर जाते हैं। अब आइए कुछ क्षण के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे। मैं यहाँ एक वचन को सोच रहा हूँ। प्रभु यीशु, हम आज सुबह सबसे आभारी लोग हैं, लेकिन अभी भी बस हम व्यक्त करने से सीमित हैं। यदि हमारे हृदय पूरी तरह से दे सकते जो हम चाहते हैं, हम नहीं जानते कि हम अपने आप में कैसे व्यवहार करें। और वहाँ पर कोई संदेह नहीं, आपने कहा वहाँ पर आशीष के लिए पर्याप्त रूप से इतनी जगह नहीं होगी जो परमेश्वर हम पर उंडेलेगा, और हम इसके लिए बहुत ही आभारी हैं। और हम बस प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे हम अपने सिरों को आपके भक्ति में झुकाते, कि आप हमारे धन्यवाद प्रदान करने को स्वीकार करेंगे। वहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए हमें धन्यवाद देना है, और हम जिन्हें व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इतना ही कहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सारी बातों के ऊपर जिसके लिए हम आभारी हैं, वो जो संसार के लिए परमेश्वर का महान उपहार है, जब परमेश्वर ने उसके पुत्र को दिया ताकि हमारे लिए एक छुटकारे के मार्ग को बनाए, हम इसके लिए बहुत ही आभारी हैं। हम इसे ग्रहण करते हैं। और उस समय से प्रभु, मैं ये याद कर सकता हूँ जब मैं छोटा सा लड़का ही था, इसी के लिए मुझे जीना है। और अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, जानता हूँ कि वह सूरज ढल जाएगा, अब और ज्यादा समय नहीं है जब तक मेरा बुलावा आ जाएगा, और जिसके लिए मैंने जिया है मैं आनंद करने जाऊँगा। मैं जानता हूँ प्रभु, वहाँ उसी राज्य के बहुत सारे रहने वाले लोग हैं जो उसी तरह से आज सुबह उस समय के आने के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि वो जिसके लिए हमने उस सफर को किया है ताकि उसकी सेवा करें और उस संगी व्यक्ति को अनंत जीवन के लिए निर्देशित करें, वह मान घड़ी बहुत ही जल्द नजदीक आ रही है। हम बस पता नहीं क्यों इसे हमारे अंदर महसूस कर रहे हैं, जितना हम इसके लिए सोच सकते हैं यह उससे भी नजदीक है। और हम प्रार्थना करते हैं कि अब आप हमें आशीष देंगे और अपनी आशीषों को लगातार देंगे जिसे आपने हमें आज सुबह दी है। और अब जैसे हम आपके वचन के भाग को पढ़ते हैं या एक या दो पद को, हम प्रार्थना करते हैं कि वह महान पवित्र आत्मा आपके आदर के लिए इन पदों को और एक गवाही को ले लेगा। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैं सोचता हूँ यहाँ एक स्थान पर, मैं सोचता हूँ ये कुरिन्थियों में पाया जाता है, दूसरा कुरिन्थियों 9:14-15 पद है। और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसीलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। पौलुस यहाँ परमेश्वर के अनुग्रह के लिए बोल रहा है जो तुम्हारे अंदर है, जो पवित्र आत्मा का न वर्णन करने वाला उपहार है जो लोगों के बीच में रहता है। वह परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है क्योंकि जो उन्होंने पाया था, पवित्र आत्मा इन लोगों के ऊपर आया था जो न वर्णन करने वाला परमेश्वर का उपहार है, बहुत ही धनी और शुद्ध है। अब मेरे मन में वास्तव में कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा मैं एक छोटी सी गवाही को दूंगा जो पिछले कुछ दिनों में जो मसीह के साथ मेरा अनुभव था, यह सबसे महिमा में रहा है। मेरे सारे जीवन को आप जानते हैं, आप में से बहुतों ने मुझे सुना है, और मैंने सोचा मैं इसे इस भवन में कुछ लोगों के लिए बताऊं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। पर यहाँ इस सुबह मेरे भवन के श्रोतागण, जो लगभग 3 राज्यों से है, जब हम बोल रहे हैं वे मेक्सिको, कनाडा और संयुक्त राज्य से है, हर एक जन बहुत ही नजदीक। यहाँ पर एक दिन 28 विभिन्न देशों के लोग थे एक छोटे से रविवार के स्कूल की सभा के लिए। देखो, 28 विभिन्न राज्यों को प्रतिनिधित्व किया। मैं इसे परमेश्वर की महिमा के लिए बोलना चाहता हूँ। यात्रा करते हुए मैं सोचता हूँ कि प्रार्थना और याचनाओं के जरिए हम जो एक फेंके हुए के नाई थे, और जो तथाकथित आज संसार की कहलाने वाली कलीसियाओं के द्वारा ठुकराए हुए हैं, वो ही भवन जो संसार के अनुग्रह की शक्तिशाली केंद्र स्थान के अंदर बढ़ चुका है, संसार में किसी भी स्थान से बढ़कर जिसे मैं जानता हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है जिस तरह से प्रभु वहाँ पर कर रहा है। यह बस एक न वर्णन करने वाली बात है किस तरह वो जो यहाँ पर कर रहा है, केवल नम्रता में बस लोग हर कहीं से आ रहे हैं। और हम इस छोटे से केंद्र के लिए आभारी हैं, जहाँ कुछ लोग सारे देश से अनुग्रह के आनंद में इकट्ठा हो रहे हैं और अनुग्रह को दूसरों के लिए फैला रहे हैं। अब मेरे सारे जीवन में मुझे ऐसा दिखाई देता था, मैं पश्चिम की ओर जाना चाहता था, और आप में से बहुत से लोगों ने कहानियों को पढ़ा है और टेपों में सुन चुके हैं। टेप की सेवकाई संसार भर में हुई है, हर स्थान पर। मैं सोचता हूँ कि ये परमेश्वर के संदेश को फैलाने का एक जरिया है उन मूर्ति पूजक देशों में, वहाँ पर जहाँ इसे जिसका अनुवाद किया जाना था, और जर्मनी और इत्यादि में उनके पास टेप है, वे उनके सभाओं में जाते हैं जो सैकड़ों सैकड़ों लोगों की होती है, और कुछ थोड़ी बातों को उनके कानों पर डालते हैं और एक टेप को चलाते हैं, और वैसे ही जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही वहाँ पर सेवक खड़े होकर और उसी बातों को जाहिर करते हैं और दूसरी भाषाओं में और सैकड़ों लोगों के सामने इसे ला रहे हैं। और केवल टेपों के जरिए से ही सैकड़ों बचाए गए और चंगाई को पाया है जो संसार भर में जा रही है। सब इंग्लिश में है लेकिन इसका अनुवाद बहुत सी विभिन्न भाषाओं में संसार की जातियों में हुआ है। हम उन लोगों से वापस मेल यानी पोस्ट के जरिए से सुनते हैं, और अब जो मैं बोल रहा हूँ हो सकता है ये परमेश्वर की महिमा के लिए है, एक व्यक्तिगत गवाही होगी, जो हो सकता है आप आने वाली रात को इस बात को समझे जो मैं बताना चाहता हूँ, यदि प्रभु की इच्छा हुई तो आप समझ जाएंगे। जैसे मैं पिछली रात को बोलने की कोशिश कर रहा था, संसार उस स्थान पर आ रहा है, ये अपने अस्तित्व को खो रहा है, राजनीतिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, अर्थव्यवस्था से। आप कहते हैं अर्थव्यवस्था और पैसा, जी हाँ, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है? हमने टैक्सों के लिए कर्जों को लिया है जिसे आज से लेकर 40 वर्षों तक भरना है। वो आर्थिक रूप से नष्ट हैं, वो दिवालिया हो गए हैं, राष्ट्र, न ही ये राष्ट्र लेकिन उन सारे राष्ट्रों की, और वहाँ पर इसे वापस करने का कोई रास्ता भी नहीं है, और ये पूरी तरह से एक जाल को बिछाया गया है ताकि इस राष्ट्र को किसी चीज के अंदर फंसाया जाए, और आप सब इस बात के जानकार हैं। तो ठीक है, किसके पास दुनिया का धन है, इसे कौन लिए हुए है? निश्चय ही वो इसे करता है, ये रोम के पास है। और जब भी हम करते हैं, हम जब आर्थिक रूप से खत्म हो जाते हैं इन बड़े बड़े व्यापारियों के बावजूद जो तंबाकू, विस्की और इत्यादि के हैं, ऐसे ही पैसा लेने के लिए करते हैं। हमें पैसे लेने के लिए क्या करना होगा? या तो हमें रुपयों को बदलना है या उधार लेना है, और जब वे ऐसा करते हैं यह जन्म अधिकार है जो पूरी तरह से वापस भेज देते हैं सिद्ध रूप से, और बिल्कुल जैसे वचन इसके बारे में कहता है। मैं एक स्थान पर जाना चाहता था, यदि परमेश्वर की इच्छा हुई तो, जब एक तंबू दृश्य पर आता है, और मैं विश्वास करता हूँ यह बहुत जल्द होगा, जल्दी ही मैं संसार भर में जाऊंगा। मुझे आने वाले समय में संसार भर की सभाओं को लेना है, और मैं एक स्थान पर जाना चाहता था जहाँ मैं लगभग 6 हफ्तों के लिए बैठ सकता हूँ और केवल उन बातों को लेकर और उनमें से होकर जाऊंगा। आप देखना, यहाँ से और वहाँ से वचन में से लेते हुए, और यह चौंकाने वाली उस घड़ी को देखना जिसमें हम रह रहे हैं, यह बहुत ही भयभीत कर देती है, यह मुझे भयभीत कर देती है। ना ही क्योंकि मेरे हृदय में आनंद की घंटियां बज रही हैं, जानते हुए कि प्रभु का आगमन बहुत ही नजदीक सामने है, लेकिन जिस बात से मैं भयभीत होता हूँ यह जानकर कि बहुत से लोग उस घड़ी के लिए तैयार नहीं है जिसका हम सामना कर रहे हैं, यही सबसे खराब भाग है। कितने लोगों ने कभी वहाँ ऊपर उस गिलहरियों के बारे में कहानी को सुना है? बहुत से लोगों ने, निश्चय ही। ओह, मैं सोचता हूँ हर किसी ने। इसी तरह से एक छोटी सी बात एक दिन घटित हुई थी, और मैं, आपने उस पहाड़ों की कहानी के बारे में सुना होगा, नीचे आ रहा था जब प्रभु ने एक दिन उन बातों को पहाड़ों पर लिखा। मेरी जीवन, मैं एक प्रचारक नहीं हूँ, हर कोई ये जानता है मैं एक प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन यह एक आत्मिक रूप में बना हुआ है, उन चीजों को देखना और बातों को आगे बढ़ते हुए देखना, और लोगों को उन बातों के बारे में पूर्व जानकारी देना जो बातें घटित होने जा रही हैं, और बस यही मेरा तरीका है। मैं इसकी मदद नहीं कर सकता हूँ, और न ही इससे अधिक अपने तरीके के लिए आप मदद कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें हर एक जन को उस देह में रखा है ताकि किसी विशेष कार्य को करें, और मैं हर एक छोटी बात को बढ़ते हुए देखता हूँ, हर एक उद्देश्य को, हर एक कारण को, क्योंकि हर एक चीज आत्मा के द्वारा नियंत्रित होती है। इस कलीसिया को यहाँ पर एक उद्देश्य के लिए रखा गया था, इस कलीसिया के पीछे एक आत्मा है, निश्चय ही। आपके घर के पीछे आत्मा है, हर एक इमारत के पीछे एक आत्मा है, हर एक बात के पीछे वहाँ पर एक आत्मा होता है, उद्देश्य होता है, कारण होता है। यह कलीसिया यहाँ पर आती है जिससे कि मनुष्य के कार्य या किसी चीज की अत्यंत प्रशंसा हो, तब इसका उद्देश्य सही नहीं है, लेकिन यदि इसे यहाँ पर रखा है जिससे कि कुछ तो परमेश्वर के राज्य के लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करे, तब इसका उद्देश्य और कारण दोनों ही सही है, यदि उद्देश्य उस तरफ निर्देशित करते हैं तो। अब मैं सोच रहा था जब से सेवकाई करते आ रहा हूं और पहले दूसरे और तीसरे चरण की सेवकाई, जब मैं पहली बार शिवरीपोर्ट आया मैंने आप लोगों को बताया आप अपने हाथों को उसके ऊपर रखें जैसे ये मेरे हाथों के ऊपर है और यह उसी बात को दर्शाता है और पवित्र आत्मा कभी एक बार भी नहीं चुका है लेकिन बिल्कुल वही आपको बताया है कि आपके साथ क्या गलत था। मैंने इसे उसी वक्त आपको बताया है, उसने मुझे उस दिन बताया, वहाँ पर एक समय आ रहा है जब तुम हृदय के उसी गुप्त भेदों को जानोगे। यह नहीं जानता था कि ये वचन कहता है कि ऐसा होगा, मैं इसे नहीं जानता था, लेकिन वचन ऐसा ही कहता है। परमेश्वर का वचन विचारों को जांचता है और हृदय के इरादों को जानता है, इब्रानियों उसका चौथा अध्याय। अब वो वचन आप देखना, आपको उस वचन को अवश्य ही कभी नहीं छोड़ना है, आपको ठीक उसी वचन के साथ बने रहना अवश्य है जिस तरह से ये लिखा हुआ है। इसमें अपने व्यक्तिगत अनुवाद को न डालें, बिल्कुल वैसे ही कहें जिस तरह से ये लिखा हुआ है। यह परमेश्वर का वचन है और यह परमेश्वर है, परमेश्वर और उसका वचन एक ही है, बिल्कुल एक जैसे। और जैसे मैंने पिछली रात को कहा था, वहाँ पर वचन का कुछ भाग हरे युग के लिए रखा हुआ था और वहाँ कुछ अभिषेक नीचे उतर कर आता है जो उस युग के लिए वचन के भाग को जो परियोजित करता है। और आप देखो हम आज कहाँ पर हैं, अध्ययन करें हम क्या करने वाले हैं, तब आप जानेंगे हम कितनी दूर आ गए हैं। मैं केवल एक ही बात को बचा हुआ देखता हूँ, किसी भी समय प्रभु यीशु का आगमन, कलीसिया का रैप्चर और हम उससे हवा में मिलेंगे। अब ये बातें इस दिन में पूरी होने जा रही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने इसकी करने की प्रतिज्ञा की है कि वह इसे करेगा। और लगभग 5 वर्ष पहले उसके समय के अपने काम को पूरा किया था, उन हरेक चरणों में से हरेक ने उसके समय के काम को पूरा किया था और वह दर्शनों को देता है और आप बहुत से जो टेपों को सुनने वाले हैं और इत्यादि लोग हैं जानते हैं वहाँ पर एक और चरण आने वाला है और उसने साधारण रीति से इसको बिल्कुल सिद्ध रूप से बाहर लाया। यहाँ पर एक मनुष्य ठीक अभी बैठा हुआ है, मैं उसकी ओर देख रहा हूँ जो ठीक वहाँ पर था और इस बात को जगह लेते हुए देखा था, बिल्कुल वैसे ही सिद्ध रूप से जैसे मैंने कभी अपने जीवन में देखा था। और यहाँ तक इसकी तस्वीर को भी लिया गया, जो प्रभु परमेश्वर ने कहा वो बात जगह लेगी और हम ठीक वहाँ पर गए और ये वहाँ था बिल्कुल उसी तरह से जैसे उसने कहा था, बस लगभग जैसे कि 17 मार्च को जिसे लाइफ मैगजीन किताब में मार्च को प्रकाशित किया गया था। आपने आकाश में प्रकाश के गोलाकार को देखा है 30 मील ऊंचा और जो 27 मील फैला हुआ था, क्योंकि जो नमी है केवल लगभग 9 मील की ऊंचाई तक ही होती है और वे इसे बना भी नहीं सकते हैं जो ये था। और ठीक उसके नीचे एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जो ठीक अभी यहाँ पर अभी उपस्थित है, जो तभी वहाँ पर मेरे साथ ही खड़ा हुआ था जब परमेश्वर से वे 7 दूत नीचे उतर कर आए, ठीक वहाँ पर स्पष्ट रूप से खड़े हुए थे और मुझे उस अंतिम समय के बारे में बताया और ये प्रकाशन और प्रकाशित वाक्य की किताब और 7 मोहरों के बारे में था और कहा वापस घर जाओ और एक एक करके संदेश को वो लेकर आएंगे। यह सही है। और यह ठीक ऊपर चला गया और सफेद होने लगा जैसे ही यह ऊपर चला गया और ऊपर और एक धमाका हुआ जिसने पहाड़ों को हिला दिया इतना तक कि एक बाल्टी के नाप की चट्टाने पहाड़ों से इस तरह से गिरने लगी और आसपास कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि अखबारों ने भी कहा, उन्होंने इस बात का निरीक्षण किया यह देखने के लिए कि जो एक ध्वनि या विस्फोट हुआ था या हवाई जहाज था या ऐसे कुछ और, वहाँ पर कुछ नहीं था, ऊपर कोई हवाई जहाज नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसके अलावा एक ध्वनि का विस्फोट इसे नहीं कर सकता है और उस वक्त इसे पहले से ही बताया गया था यह उस तरह से होगा इसके घटित होने से 6 महीना पहले, 6 महीने, और यह वहाँ पर था। और विज्ञान आज इसकी जांच कर रहा है, ठीक वहाँ टूसॉन और विभिन्न स्थानों में वे यह नहीं समझ सकते हैं कि वहाँ पर ऊपर क्या था। फिर यदि आपको मैगजीन वो किताब मिलेगी और आप देखेंगे, आप उनके पंखों के आकार को भी देख सकते हैं जो अभी भी वहीं पर हैं जब वे ऊपर जा रहे थे, वो 7 दूत। और हम जानते हैं ये बातें सही है दोस्तों। ओह यदि वहाँ पर एक कभी समय था कि कलीसिया को गंभीर रूप से सच्चाई में होना है, इसे ठीक अभी होना चाहिए, अभी। लेकिन इसने बस मेरे लिए कुछ तो किया है मुझ में, क्योंकि अब 5 वर्षों से लेकर मैंने सोचा है कि यह क्या गलत था। मैंने अपने हृदय में ऐसा महसूस किया कि मैं पूरी तरह से किसी चीज के नीचे दब गया था और मैं नहीं समझ सका कि यह क्या था। इस बड़े दबाव के समय के दौरान और इत्यादि, मैं तब बेसुध होकर सारे देश में इधर उधर और यहाँ वहाँ घूम रहा था और सरकार ने मुझे एक जांच पड़ताल के अंदर रखा था क्योंकि जब हमारी सभाएं होती है कोई तो मुझे एक चेक लिख कर देता है विलियम ब्रेनम और मैं बस हस्ताक्षर करके और इसे वापस दे देता हूँ और तब हमारे पास हमारी सभाओं का सारे खर्चा का ब्योरा होता है और जब उन्होंने इसमें से होकर देखा और पाया इस पैसों का अभियान या उन सभाओं के अंदर भरा गया था मगर जैसे ही इस पर मैंने अपने हस्ताक्षर को किया था मैंने चेक के साथ अपनी पहचान को दे दिया कि यह मेरा था। मुझे सरकार को $300,000 भरना था और वे मुझे नहीं जाने देते और मुझे वहाँ पर रहना होगा और इत्यादि क्योंकि बहुत समय लगता है ताकि सारी बातों में से होकर वे जांच करें और मुझे नहीं सब कुछ उन्होंने कहा जी हाँ ये पैसे उन सभाओं में गए हैं लेकिन लोगों ने चेक आपके लिए बनाया था और जब आप इस पर लिखते हैं आप चेक के साथ अपनी पहचान को देते हैं आपको इस पर इनकम टैक्स भरना होता है। यदि आप यहाँ तक एक क्षण के लिए भी अपने हाथ में चेक को पकड़ते हैं यह तभी भी आपका होता है क्योंकि आपने इस पर लिखा है। मैं इसे नहीं जानता था मैं इस कानून और इत्यादि की प्रक्रिया को नहीं जानता मुझे इस पर हस्ताक्षर की बजाय इस पर मोहर से थप्पा लगाना चाहिए था। जब मैं इस पर हस्ताक्षर करता हूँ इसका मतलब होता है कि यह मेरा है और फिर वे सीधा उस खर्चे के ब्यौरे में जाकर और वहाँ जांच करते हैं और यह सीधा कोष में गया था और इस तरह से पैसे को खर्च किया गया है। मैं अपनी कलीसिया से वेतन को लेता हूँ एक हफ्ते के $100। वहाँ पर एक खजांची बैठे हुए हैं ठीक वहाँ पर बैठे हुए हैं वो जानते हैं कि यह सही है और यही सब वहाँ से मुझे मिलता है और नहीं तो ये ठीक सभाओं में चला जाता है। अब मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं पिछले 4 या 5 वर्षों से दबाव में था तो अभी हाल ही में कनाडा में गया मैं एक छोटे से शिकार के दौरे में गया था और मैं वहाँ गया प्रभु ने वहाँ पर मेरी सहायता की ताकि वहाँ सारी मूल इंडियंस जाति को प्रभु यीशु की ओर अगुवाई करूँ और मुझे वापस जाना था वहाँ ऊपर जब वो छोटी खाड़ी की बर्फ पिघलने लगी थी और इत्यादि जिससे सारी जाति को प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा दूं क्योंकि एक मूल इंडियन महिला की चंगाई हुई थी जो हृदय के दौरे से मर रही थी वो याजक उसके लिए नहीं आया होगा। बहुत दूर जंगल में जहाँ मुझे घंटों घोड़े की पीठ पर सवारी करके जाना था वे वहाँ ठीक अभी बैठे हुए हैं जो वहाँ उपस्थित थे जब ये घटित हुआ था और अब बाद में नीचे आते हुए मुझे कोलोराडो में रुकना था ताकि मैं अपने मित्रों से कुछ सेवकों से वहाँ पर मुलाकात करूँ। मैं एक मार्गदर्शक हूँ कोलोराडो में और मैं उन्हें शिकार के दौरे के लिए लेकर जा रहा था। उनमें से 2 या 3 लोगों को 3 या 4 उनमें से 5 बैठे हुए हैं जो ठीक अभी यहाँ पर उपस्थित हैं अब ये जानने के लिए। और इस वर्ष कोलोराडो में बहुत ही ज्यादा ठंडा रहा था वैसे ही ये सारे राष्ट्र में ठंडा रहा था और आग को बहुत ही बढ़ा दिया गया था इसलिए उन्होंने शिकार के समय को थोड़े समय के लिए विलंबित कर दिया था। लेकिन जिस समय हम वहाँ ऊपर थे वहाँ पर एक बात घटित होने वाली थी कि वहाँ एक बर्फीला तूफान आने वाला था और उस समय के दौरान उन पहाड़ों में होना बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है आप अपने आगे अपने हाथों को भी नहीं देख सकते हैं घंटों घंटों के लिए और ठीक एक ही समय पर कुछ ही घंटे में 30 फुट बर्फ ऊपर तक भर जाती है ठीक आपके ऊपर तक आप खत्म हो जाते हैं। इसलिए मैंने उस सुबह को अपने भाइयों से कहा जब हम बाहर जा रहे थे मैंने कहा अब वो बर्फीला तूफान लगभग 100 पुरुष या उससे ज्यादा जो हमारे ठीक पीछे रहे थे और यहाँ पर वे जीप ट्रक और हरेक वाहनों से वहाँ से बाहर निकल रहे थे क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि क्या होने जा रहा था। कोई भी पीछे नहीं छूटा लेकिन वे ग्वाले खुद वहाँ पीछे रह गए थे जो वहाँ सर्दियों में रहते थे और हम केवल थोड़े ही लोग थे एक ही ट्रक जो वहाँ पर रुकी हुई थी और मैंने भाइयों से पूछा था उन्होंने कहा हम रुकेंगे तो फिर अच्छी बात है मैंने कहा आप तैयार हो जाओ और हम बाहर गए और हमारे साथ एक मेथोडिस्ट सेवक और मैं कुछ रोटी और सामग्री को लेने के लिए गए इसलिए कि हम उसे उपलब्ध कर सकें। यह लगभग 30 मील अंदर और पीछे था तो हम वापस आए और भाई जॉन और वे यहाँ पर बैठे हुए हैं उन्होंने तूफान के बारे में सुना था और वे दूर निकल गए थे उस समय पर वे दूर निकल गए थे क्योंकि बर्फीला तूफान आने वाला था लेकिन हम वहाँ पर ठहरने जा रहे थे और मैं एक सभा के लिए टूसॉन में जाने वाला था और मैंने अपनी पत्नी को फोन किया और उससे कहा कि हम यदि मैं वहाँ पर नहीं आया तो किसी को मेरी जगह पर भेज देना और अगली सुबह हम बाहर निकल गए। मैंने कहा अब ये पहली बार है ये सचमुच में बादल छाया हुआ था आप बारिश की आवाज को गिरते हुए सुन रहे हैं आप वापस छावनी में चले जाएं जितना जल्दी आप जा सकते हैं क्योंकि अगले 10 मिनट या 15 मिनटों में आप अपने वापस जाने के रास्ते को फिर से न देख पाएंगे। और तो मैंने वहाँ नीचे कुछ लोगों को खड़ा किया था और चलकर ऊपर पहाड़ी की चोटी पर गया था कोशिश कर रहा था कि हिरन को वहाँ से नीचे उन लोगों के पास भेजूं। और इसे कुछ ही दिन पहले मैं अपनी बंदूक से शिकार कर रहा था वहाँ टूसान में, वहाँ वापस ऊपर आते हुए थोड़ा दाहिनी तरफ गोली को चलाया। मैंने एक बड़े 12 सिंगा को मारा जिसके लिए मैं वर्षों वर्षों से देख रहा था, और ये उसे बहुत ही ऊंचाई से लगी और वो वहाँ पर नीचे मर गया और मुझे वो नहीं मिला और मौसम बहुत ही खराब होते जा रहा था। मैंने सोचा मैं वापस ऊपर दौड़कर जाऊंगा और उसे एक बार देखूंगा। और जब मैं पहाड़ के ऊपर पहुंच गया मैंने देखा बारिश आरंभ हो गई थी और बर्फ गिर रही थी और बड़ी बड़ी बर्फ की बूंदें एक चांदी के डॉलर के आकार की जो हर कहीं पर चिपक रही थी और हवाएं लहरा रही थी। मैं जान गया हर एक जन भाग रहा था, तब वे वापस तंबू की ओर जाने लगे। तो मैं कुछ देर तक रुका रहा और मैंने सोचा मैं इस तूफान में इस हिरण को कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा, इसलिए हम आगे बढ़ते गए। पहाड़ से नीचे आने लगे, सिर्फ मेरे सामने 10 फुट ही देख सकता था और लगभग 4 मील या उससे अधिक दूर था अपने स्थान पर पहुंचने के लिए। जानते हुए मैं पहाड़ से नीचे आने लगा, उस देश को बहुत अच्छी तरह से जानता था क्योंकि मैंने वहां पशुओं को वर्षों वर्षों पर ध्यान दिया है। पहाड़ से नीचे आते मैं उस घाटी से कुछ आधा मील की दूरी पर ही था जहां पर इस तरह से चौराहा था, उस हद के पार जहां पर हम थे, और वहां पर मैं अपने हृदय में उस भयानक बोझ को महसूस करते आ रहा था। मैं रोया हूं, मैंने प्रार्थना की है, मैंने स्वीकार किया है, मैं क्या कर सकता हूं? वो क्या था जो मैंने किया है? जैसे कि तुमने वास्तव में कुछ तो गलत किया है, जैसे तुमने किसी को तो दुख पहुंचाया है और आप जानते हैं आपको इसे सही करना चाहिए। मैं किस बात के लिए दोषी था मैं नहीं जानता था। मैंने कहा प्रभु यदि आप केवल मुझ पर यह प्रकट करें मैं इसे ठीक कर लूंगा, लेकिन मैंने क्या किया है सिवाय खड़े होकर और प्रचार करने के, और वह सब जिसे मैं करने के लिए जानता था। और मैंने कोशिश की है कि साफ निर्दोष और केवल आपके वचनों के अनुसार जीऊं, लेकिन मैंने क्या गलत किया है? और अब भी वर्षों वर्षों से मेरे हृदय से वो बोझ नहीं गया। और उस सुबह को इसके बारे में मैंने उस पहाड़ पर सोचा और मैंने नीचे उतरना आरंभ किया। यह मेरे विवाह की सालगिरह के पहले का दिन भी था। मेरी पत्नी और मैंने 20 वर्ष पहले विवाह किया था और मैं विवाह की सालगिरह पर कभी भी घर पर नहीं रहा था, और मैं हमेशा ही उस पहाड़ पर जाता हूँ एक छोटे से स्थान में जहाँ पर वो जहरीले सर्प थे। उस पहले वर्ष पर जब हमने विवाह किया था मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि उसे हनीमून पर लेकर जाऊँ एक छोटे से दौरे के लिए, और तब मेरा शिकार का दौरा भी था, इसलिए मैं अपनी पत्नी को एक शिकार के दौरे पर हनीमून पर लेकर गया। इसलिए एक प्रकार से इसे लेते हुए ऐसा दिखाई दिया एक ही समय पर दोनों हो जाएगा। और मुझे याद है एक छोटी सी महिला और मैंने उसे ऊपर उठाकर और उसे वृक्ष के लट्टे पर चढ़ाया था, और हम उस एक छोटे से स्थान पर गए और मैंने उसकी तस्वीर को लिया और वो हमेशा ही एक तरह से सुंदर थी। मैं उसके लिए सोचता हूँ और उसके काले बालों के लिए सोचता हूँ, और वह कितनी खूबसूरत थी, और अब वो बूढ़ी हो गई है और बस कुछ ही वर्ष में वो ऐसी हो गई थी। मैंने सोचा मैं सोचता हूँ मैं वहाँ पर जाऊँगा, लेकिन ये बहुत ही कठिन है। वहाँ पर उस समय पर बर्फ और ज्यादा हो गई थी। मैं जानता था कि मुझे अंदर होना था क्योंकि उन्होंने प्रसारित किया था कि सारे रास्ते पर एक भारी बर्फीला तूफान आएगा। उन्होंने इसे सारे राष्ट्र में प्रसारित किया था। मैं नहीं जानता भाई टॉम सिम्पसन आज सुबह यहाँ पर बैठे हुए कि नहीं, जो कनाडा से आते हैं, उसे रेडियो के द्वारा बताया गया था कि आप उस देश से होकर भी मत जाना। हर एक ने कहा वहाँ से होकर मत जाना, दूसरे मार्ग से जाना, क्योंकि एक खतरनाक बर्फीला तूफान चारों ओर फैल रहा है। और ये सोचते हुए मैंने पहाड़ के नीचे उतरना आरंभ किया और लगभग सुबह के 10 बजे थे, और अचानक ही बिल्कुल उतना ही साफ जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, उस आवाज ने कहा रुक जाओ, मुड़कर और वापस जाओ। अब मैं इस बात को उन लोगों के बीच में नहीं बता सकता जो अविश्वासी हैं, आप केवल इसे विश्वासियों को ही बता सकते हैं, और फिर क्योंकि इसे अविश्वासी कभी नहीं समझ सकते हैं, आपके पास आत्मिक बातों को समझने के लिए आत्मिक मन होना चाहिए। वचन आत्मिक है, इसका अनुवाद आत्मिक है, और यह परमेश्वर का वचन है। और मैं रुक गया और मैंने सोचा यदि मैं वापस वहाँ पर जाता हूँ एक और आधा मील वापस ऊपर और तूफान इस तरह से बढ़ते जा रहा है जैसे, और डेविड वुड ने मेरे लिए एक सैंडविच बना कर दिया था और यह मेरे पास था। मैं सोचता हूँ एक समय उसने मेरे लिए और उसके पिता के लिए भी बनाया था। हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ प्याज और शहद और ब्रेड के अलावा, और मैंने इस सब को एक साथ किया, हमने एक सैंडविच को हमारे लिए बनाया, और वह उसके सैंडविच को नहीं खा पाया, और मुझे लगता है वो मेरे साथ आने की कोशिश कर रहा था इसलिए उसने रख दिया। मैं नहीं जानता यह सब वो किस तरह का, और ऊपर पहाड़ की ओर जा रहा था और बारिश बहुत तेजी से हो रही थी और बारिश से यह गीला हो गया और यह एक में ही पूरी तरह से भरा हुआ था। मैंने सोचा तो ठीक है मैं इसे खाकर और रुकूंगा, और उस समय मैं वहाँ पर खड़े होकर सोचने लगा, यह कुछ और नहीं, यह सिर्फ मेरी कल्पना थी, यह शायद एक हवा थी जो उड़ रही थी, जो इन पेड़ों में से होते हुए लहरा रही थी। और मैंने चलना आरंभ किया और मैं बस नहीं चल पा रहा था, और मैंने सोचा सो मैं सोचता हूँ मैं वापस जाऊँ, और मैंने फिर से सुना तुम वापस जाओ जहाँ से तुम आए हो। इसने यह कहा, मैंने पहाड़ पर चढ़ना आरंभ किया, रुक गया, और मैंने सोचा हो सकता है मैं वापस जाने से डर रहा था जहाँ पर मैं था, क्योंकि वे हवाएं बहुत ही तेज थी। कभी कभी परमेश्वर उन चीजों को करवाता है जो बहुत ही खतरनाक और सीमा से बाहर दिखाई देती हैं। मूसा के बारे में किस तरह से वो छड़ी के साथ था जो नीचे उस मिस्र को लेने जा रहा था, और हर एक चीज जो हम इस तरह से पाते हैं जिसे परमेश्वर असंभव को निमंत्रण देता है। देखो, क्योंकि वह असंभव बातों को करता है जिससे मनुष्य जान जाए कि यह वो नहीं है, यह तो परमेश्वर है जो इसे कर रहा है। मैं वापस सबसे ऊपर पहाड़ की ओर फिर से चला गया। मैं उन पहाड़ों में से होते हुए लहराते पेड़ों में से होकर अपने रास्तों को ढूंढ रहा था। मैं नीचे बैठ गया, मैंने अपनी बंदूक को लिया और उस दूरबीन को ऊपर की तरफ रखकर देख रहा था। इस तरह से भालू उस समय दौड़ रहे थे, और तो मैंने दूरबीन को मेरी शर्ट के अंदर इस तरह से वापस रख दिया और कुछ समय के लिए नीचे बैठ गया। मैंने सोचा मैं यहाँ पर बैठकर क्या कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर रहस्यमय तरीकों से कार्य करता है। उसके अद्भुत कार्य दिखाने के लिए वे शारीरिक विचारों से इसे ढूंढते हैं, वे कभी इसकी एक झलक को भी नहीं पकड़ पाते हैं। और जब मैं पीछे जाकर और बैठ गया, वहाँ पर बैठकर परमेश्वर के लिए सोचने लगा, सोचता हूँ मैं क्यों यहाँ पर वापस आया। मैंने सोचा ओह, इस समय मुझे उस घाटी के सबसे नीचे जाना है, यह तूफान तो हर समय बहुत ही तेज होता जा रहा है, अंत में मैं अपने आगे कुछ न देख सकूंगा। और अब यदि आप इसे विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन यह सच्चाई है। एक आवाज ने मुझसे बात की और कहा, मैं प्रभु परमेश्वर हूँ, मैंने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की है, प्रकृति मेरी आज्ञा को मानती है। और तब मैं वहाँ पर कुछ देर के लिए बैठ गया, झटके से मेरी टोपी को उतारा, और कहीं पर तो वो आवाज थी, मैं इसे नहीं देख सका, केवल एक ही चीज मैं सुन सकता था जो वहाँ कहीं तो उन पेड़ों में थी। मैंने सोचा आम तौर पर आप उस उजाले को देखते हैं जिसे आप सब जानते हैं, अक्सर ये यहाँ पर होता है, लेकिन मैंने हर कहीं देखा और उजाले को नहीं देख पाया। मैंने कहा, आप कहाँ पर हैं ओ परमेश्वर मेरे सृष्टिकर्ता? मैंने यहाँ वहाँ देखा, मैं इसे और नहीं सुन सका उसकी आवाज को। मैं कुछ मिनटों तक रुका रहा। उसने कहा, मैं प्रभु परमेश्वर हूँ जिसने तुमसे कहा था कि उन गिलहरियों को अस्तित्व के अंदर लेकर आओ, और आप सब इसके बारे में जानते हैं, और इसीलिए मेरी सहायता करें इस बाइबल से जो मेरे सामने है। इस धन्यवाद प्रदान करने की सुबह पर यदि ये सच्चाई नहीं है तो परमेश्वर होने पाए ठीक इस मंच पर अभी मुझे मृत्यु को दे दे। देखिए ये सच्चाई है, वह अब भी वैसे ही सृष्टि करता है। एक परमेश्वर जो अब्राहम के लिए मेढ़े का प्रयोजन कर सकता है, वह प्रयोजन कर सकता है। वह अब भी यहोवा यीरे है, वो परमेश्वर प्रयोजन कर सकता है। अब्राहम को वो मेढ़ा कहाँ पर मिला? देखो, रोजाना जीवन से 3 दिन के सफर के बाद पहाड़ के सबसे ऊंचाई पर, जहाँ पर कोई भी पानी और कुछ भी नहीं है, और उसे एक मेढ़े की आवश्यकता थी, और वहाँ पर एक मेढ़ा उसके सींगों के द्वारा जंगल में फंसा हुआ था, और अब्राहम वहाँ पर चला गया और उसने चट्टान को लिया और वहाँ पास ही उस वेदी को बनाने के लिए। लेकिन परमेश्वर तब भी यहोवा यीरे ही बना रहता है, वो परमेश्वर इसे अपने खुद के लिए प्रयोजन करेगा। जो कुछ भी उसने प्रतिज्ञा की है, जिसे वो करने में सक्षम है, यही वो वहाँ मती में वचन है। मैं सोचता हूँ मरकुस 11:22 में, यदि तुम उस पहाड़ से कहो, मैं कभी भी ये समझ नहीं पाया, आप उसके बारे में कहानी को जानते हैं, और इसीलिए मेरी सहायता करें, ये सच्चाई है। उसने कहा, मैं ही वो एक हूँ जिसने उस गिलहरियों का प्रयोजन किया। उसने कहा, अब जब मैं फिर से सुनने लगा ताकि देखूं वो क्या कहता है, कुछ भी नहीं थमा, हवाएं बस जबरदस्त चल रही थी, चलती जा रही थी। मुझे खुद को संभालना है, क्योंकि मैं आपको कुछ तो बताऊंगा। वास्तविक आत्मिक मन मूर्खता से एक कदम आगे होता है, क्या आप ये जानते हैं? एक वैज्ञानिक शोध आपको इसे बताएगा। यहाँ पर ये आप हैं, धीमे और गिरावट में, और तब आप जरा सा और आत्मिकता में आते हैं, तब आप लगभग इस तरह से होते हैं, फिर आप एक सुस्त कुल्हाड़ी के जैसे होते हैं, और उसके बाद एक धारीदार छुरा हो जाते हैं। अब आप जानते हैं वहाँ पर आप कौन सी तरफ गिरेंगे। यदि एक मनुष्य खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करता है वह निश्चय ही गलत दिशा में जाता है। यदि वहाँ पर परमेश्वर उसे ऊपर उठाता है, वो सामान्य व्यक्ति से बहुत ही ऊपर होता है। यही है जहाँ पर वे दर्शन और आदि आना आरंभ होते हैं, वहीं पर जहाँ परमेश्वर का राज्य है। उन कवियों को, उन नबियों को और उन सभी को पागल माना जाता था। यीशु खुद एक पागल मनुष्य कहलाया गया था। कहा, हम जानते हैं तू एक पागल है और तुझ में एक शैतान है। पागल का मतलब होता है सनकी। इन सारे कवियों को और नबियों को देखो जिन्हें यह माना गया था, जो अत्यंत कोशिश करते, यदि आप अपने आप को वहाँ ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, आप नष्ट हो जाएंगे, आप कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। यह तो एक हाथ है जो उस महिमा से नीचे आता है ताकि आपको उस किनारे पर थामे रखे जो कि सही और गलत बातों के बीच में है, और उन किनारों में खड़े होते हैं जहां पर से उस पार ब्यूला देश की ओर देख सकते हैं। तब उसी घड़ी पर इसने फिर से बात की, उसी समय पर जब मैं वहां ऊपर बैठा हुआ था। उसने कहा, मैं ही वो एक हूं जिसने उस रात को खड़े होकर और हवाओं और आंधियों को शांत किया था। कहा, अपने पैरों पर खड़े हो जा और उस तूफान को डांट, यह तुम्हारी आज्ञा को बिल्कुल वैसे ही मानेंगे जो तुम कहते हो। यही मेरे आने वाली तीसरे चरण की सेवकाई रही थी। यह वर्षों से आगे बढ़ रही थी और ऐसा दिखाई देता था कि वहाँ कुछ है जो चिंतित रहता है। मैंने सोचा, ओह नहीं, लेकिन बिल्कुल उसी तरह से उसने किया है। और ये फिर से वही था, ये फिर से उसी का आत्मा था, बिल्कुल उसी तरह से। लेकिन मेरे पास बहुत सारे दूसरों के निमित्त शारीरिक नकल करने वाले लोग थे। यहाँ तक मुझे उस विषय पर सोचने के लिए भी डर लगता है, क्योंकि आपके पास ऐसे लोग होंगे बिल्कुल निश्चय ही उसी तरह से जैसे संसार के पास होते हैं। वहाँ पर हमेशा ही मिली जुली झुंड होती है और वो शारीरिक नकल करने वाले उसी तरह से करते हैं। ऐसा उसके दिनों में किया गया, यही मूसा के दिनों में किया गया। वो हर एक समय में इसे करेंगे, ये इस दिन में करेंगे जब पवित्र आत्मा कुछ तो कार्य करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी यदि एक व्यक्ति आत्मिक है, वो शारीरिक नकल करने वाला केवल उस एक सही को बड़ा चढ़ाकर करता है। यही वो परमेश्वर का सच्चा लेख है। और वहाँ उस समय पर खड़ा हुआ मैं उठा, मैंने कहा, प्रभु परमेश्वर, प्रकृति के महान सृष्टिकर्ता, मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप ही बोल रहे हैं। न ही एक बार भी मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखाया जो गलत था, और एक समय भी आपने मुझे कुछ बोलने नहीं दिया जो पूरा नहीं हुआ हो। मैंने कहा, इसलिए मैं इस बढ़ते हुए तूफान से कहता हूँ, अपने स्थानों पर वापस चला जाए, इसे ऐसे ही छोड़ दे। और मैं आज्ञा देता हूँ कि सूर्य अगले चार दिनों तक चमकता रहे। ये पुरुष अपने शिकार को नहीं पा लेते हैं और मैं उन्हें पहुँचने में उनकी मदद कर सकूँ और इन पहाड़ियों से बाहर निकल जाएं। और प्रभु परमेश्वर, जो आज की सुबह मेरा पवित्र न्यायी है, वो बारिश और आदि चीजें कुछ ही समय के अंदर मुड़ने लगी। वहाँ इसका एक भी अंश नहीं था। मैंने देखा और वहाँ पर वो हवा एक तरफ से आने लगी, पहाड़ की चोटी के ऊपर से, और उन बादलों को इस तरह से ऊपर उठा लिया। कुछ एक मिनटों के अंदर वो सूरज ऊपर निकल आया, वहाँ ठीक सबसे ऊपर, और सीधा वहाँ पर चमकने लगा उतना ही खूबसूरती से जितना वो हो सकता है। उसी तरह से ये जर्मनी में हुआ। आपको वो जर्मनी की बात याद होगी, जब वे 15 जादूगर जो एक तरफ खड़े थे और उन्होंने एक कैंची को लिया और काटने लगे। उन्होंने एक पंख को काटा और इसके पीछे की तरफ से नोक को बनाया और वहाँ पर खड़े होकर उनके सम्मोहन को करने लगे। उन्होंने कहा, वे तंबू को दूर उड़ा देंगे जिसमें 30,000 लोग थे। और भाई आर्गन ब्राइट वहाँ पर खड़े हुए थे और वहाँ पर तूफान आने लगा और एक बादल ठीक ऊपर आ गया। मैं वहाँ पर भाई लॉस्टर के पास खड़ा हुआ था। आप में से बहुत लोग उन्हें जानते हैं और वे अमेरिका के जन्मे जर्मन हैं। वो वहाँ पर मेरे अनुवादक हैं और वे ठीक वहाँ पर खड़े हुए थे। मैंने कहा, इसका अनुवाद मत करना। लेकिन मैंने कहा, प्रभु परमेश्वर, आपने मुझे एक दर्शन को देकर और मुझे जर्मनी के लिए भेजा है। इन जादूगरों ने इस तूफान को लाया है। आप सृष्टि के परमेश्वर हैं। वह इस बात को जान जाए कि आप परमेश्वर हैं, कोई और नहीं। लेकिन जो इंग्लिश समझ सकते हैं, और वहाँ पर दर्जन लोग भी नहीं थे जो इसे समझते कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। तभी उसके बाद वो तंबू इस तरह से ऊपर उठने लगा जिसमें 30,000 लोग जो उसके नीचे थे, जो इस तरह से ऊपर नीचे होने लगे, नीचे बैठ गए और बादल और गर्जनाएं होने लगी। और 5 मिनट से भी कम समय में वो सूरज ठीक वहाँ पर चमकने लगा था जब लगभग 15,000 जर्मन लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए। वह अब भी परमेश्वर है। वह बिल्कुल उतना ही परमेश्वर है जितना वो हमेशा रहा था। तो ठीक है, जब मैं वहाँ उस पहाड़ी पर खड़ा हुआ था, लगभग 4 दिनों के बाद बाहर आ रहा था। हर एक जन यहाँ पर सच्चाई को जानता है, उस घड़ी से लेकर 4 दिनों तक आकाश में एक भी बादल नहीं था। जब मैं नीचे आया और बाहर गया कुछ पेट्रोल को खरीदने के लिए निकला, जब हम पहाड़ों से बाहर आए मैंने कहा हम बहुत ही सूखे में रहे हैं। कहा जी हाँ ये सूखा रहा है। कहा उसने कहा हम एक दिन उस तूफान के उठने के लिए देख रहे थे लेकिन हम नहीं जानते, वह रुक गया। देखा मैं कोलोराडो की दूसरी तरफ चला गया, रुक कर कुछ पेट्रोल को लिया। बिली पॉल मेरा बेटा वहाँ पर वापस आया, हम सब एक साथ इकट्ठे हुए। मैंने कहा हम जरा देखें यदि वो यहाँ पर रुक गया है तो, और मैं गाड़ी चलाकर अंदर गया। मैंने कहा सुप्रभात, तो हम उस व्यक्ति से बात करने लगे। उसने कहा सुप्रभात, और वह, मैंने कहा वास्तव में एक खूबसूरत दिन है। उसने कहा हाँ वह पुराना सूरज ऊपर आ रहा है, फिर से गर्म हो रहा है। कहा निश्चय ही इस गर्मी के मौसम में ये गर्मी हमें जला देगी। और मैंने कहा जी हाँ। मैंने कहा ऐसे सारे देश भर में है। उसने कहा जी हाँ मैं समझता हूँ। और मैंने कहा ऐसे प्राय तूफानों के समय पर हो रहा है। उसने कहा क्या तुम जानते हो। कहा सारे अखबारों में रेडियो में और हर कहीं पर एक दिन ये बता रहे थे कि तूफान आने वाला है और बादल आने लगे और तूफान आरंभ हो गया था और यकायक हम नहीं जानते इसके साथ क्या घटित हुआ और ये सब दूर चला गया। वह अब भी परमेश्वर है, बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर जैसे वह हमेशा से रहा था। लेकिन कैसे उन बातों को एक मनुष्य बोल सकता है जब तक पहले परमेश्वर उसे यह बोलने के लिए नहीं कहता। देखो ना ही विचार के नीचे, लेकिन आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं तब आप इसे करते हैं। लेकिन रुकिए यह कहने की कोशिश ना करें। ओह इसी तरह से है बहुत से लोग, मैं सोचता हूँ, और परमेश्वर के दान इसे समझने के लिए रुकिए। आप जानते हैं यह परमेश्वर है। देखो रुके रहो जब तक वो आवाज नहीं आती है और आप इसे नहीं सुनते हैं और इसे नहीं समझते हैं, इसे देखते हैं, तब आप कह सकते हैं यह यहोवा यो कहता है। यदि यह यहोवा यो कहता वाला वचन नहीं है तब यह आपका एक विचार है या किसी की तो सोच होती है। लोगों से विनती करते हैं इसे मेरे लिए कहो, इसे मेरे लिए करो। आप इसे कैसे कर सकते हैं यदि आप परमेश्वर के साथ सच्चे हैं तो, जब तक परमेश्वर आपको पहले नहीं बताता है। मैं आपको कैसे बता सकता हूँ ये जैक मोरे यो कहते हैं। ये जैक मोरे ने मुझसे कुछ कहने के लिए नहीं कहा है, समझे। इसे पहले परमेश्वर से आना है, ना ही उस विचार से, इसे परमेश्वर होना है और बाद में ये घटित होगा क्योंकि तब इसे यहोवा यो कहता वाला होना है। अब हर एक जन के पास ये नहीं होता है। नहीं श्रीमान यह उस तरह से नहीं होगा, यह कभी भी उस तरह से नहीं था, यह कभी भी उस तरह से नहीं होगा। परमेश्वर एक व्यक्तिगत रूप से व्यवहार को करता है। उसने नूह के दिनों में किया था, उसने यहोशू के दिनों में किया था, उसने मूसा के दिनों में किया था, वह हमेशा ही करता है। उसने कभी भी एक सिद्धांत को नहीं बनाया है, यह एक व्यक्तिगत होता आया है क्योंकि दो मनुष्य एक समान नहीं है किसी भी समय। देखो उसने कभी ऐसा नहीं किया है। लेकिन हरेक के पास मूसा नहीं हुआ होगा, उन्होंने इसे समझा, उन्होंने केवल अनुकरण किया। और पवित्र आत्मा, यदि एक मनुष्य परमेश्वर का अभिषेकित है, वह आपको पवित्र आत्मा और बाइबल का अनुकरण करने के लिए निर्देशित करेगा क्योंकि वही वो एक है जो उन बातों को करता है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में लोगों में कार्य कर रहा है। वहाँ पर खड़े होकर मैंने वापस नीचे चलना आरंभ किया। मैं वहाँ खड़ा था, मैं चिल्ला उठा, मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ, यह देखने के लिए कि वहाँ पर कुछ ही क्षण के अंदर जो घटित हुआ था। और वे भाई लोग वहाँ ऊपर, अब कितने लोग हैं? क्या कोई यहाँ पर बैठा हुआ है? मैं जानता हूँ फ्रेड सॉटमैन और वे लोग यहाँ पर हैं जो वहाँ ऊपर थे। नहीं, फ्रेड मेरे साथ किसी और स्थान पर थे। क्या यहाँ पर अभी कोई है जो वहाँ पर ऊपर था, भाई बैक्सवुड, या वे अभी यहाँ पर हैं? क्या कोई यहाँ पर है बिली पॉल को छोड़कर और कोई वहाँ पर था? वे भाई लोग अभी अभी चले गए हैं। जी हाँ, और भाई वुड और भाई टेलर और, या मैं दूसरे भाइयों के नाम भूल गया, वे चार और पांच वहाँ पर खड़े हुए थे। ये भाई लोग यहाँ पर हैं। भाई मार्टिन तभी चले गए थे आने वाले तूफान की वजह से, वे एक दिन पहले चले गए थे। आप सबको याद है वो तूफान, और इसे प्रसारित किया गया था और उन्होंने कहा कि ये आ रहा था। अब क्या कहते हैं, आपकी इससे मुठभेड़ हुई, आपकी इससे मुठभेड़ हुई थी फिर? और अब ध्यान दें, वहाँ खड़ा होकर मैंने सोचा, तो मैं सोचता हूँ मैं घाटी के नीचे जाऊंगा। और मैंने कुछ वर्षों पहले परमेश्वर से प्रतिज्ञा की बाहर फुल गॉस्पल व्यापारी के साथ जाते हुए कि मैं किसी भी और के लिए शिकार को नहीं करूंगा जब तक यह एक आपातकालीन नहीं होती थी। मैं बस ऐसे नहीं करूंगा। और हाँ, यह भाई जैक पाल्मर है, क्या वो यहाँ पर है? भाई जैक जो जॉर्जिया से है, वो अक्सर यहाँ पर आते हैं। वो वहाँ पर थे और उस रात के पहले उन्होंने कहा, भाई ब्रैनम मेरे लिए एक हिरण को लेकर आना। और ओह, मैं बस हिल गया क्योंकि मैं जानता था मैंने चार या पांच वर्ष पहले प्रतिज्ञा की थी कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्योंकि उस वर्ष मैंने अकेले ही 19-12 सिंगों के सर को खत्म किया था। केवल उन व्यापारी लोगों के लिए जो वहीं कहीं पर बैठकर और उनके व्यापार के बारे में बात करते थे और मुझे यहाँ वहाँ जाकर उनके लिए शिकार करना होता था और यह बस ठीक नहीं दिखता था, यह जैसे मुझे एक हत्यारे के दर्जे में डाल देता था, लेकिन मैं इसे नहीं करूँगा। मैं उन्हें वहाँ पर लेकर जाऊँगा जहाँ पर ये थे, लेकिन मैं इस पर गोली नहीं चलाऊंगा। इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रतिज्ञा किया मैं ऐसे नहीं करूंगा। तो तब मुझे जाना पड़ा, मैंने उस स्थान को छोड़ा, वापस जाने लगा, पहाड़ी से वापस नीचे जाने लगा और एक आवाज ने मुझसे बातें की और कहा, तू मेरे साथ क्यों नहीं चलता है? और मैंने कहा, प्रभु परमेश्वर, यदि ये आप हैं तो मैं जानता हूँ केवल वही परमेश्वर का हाथ हो सकता है जो उन बादलों को विभाजित कर सकता है और वो कर सकता है जो आपने यहाँ पर किया है। और गर्म सूरज नीचे जा रहा था, मेरी कमीज सूख गई और इसमें से भाप निकल रही थी। और मैंने कहा, एक बड़ा विशाल गिरजाघर, प्राकृतिक जंगल को आप जानते हैं। और मैंने कहा, मैं सोचता हूँ मैं उसके बाद उस तरफ चलकर जाऊंगा, प्रभु यदि आप मुझे कोई निश्चित दिशा को नहीं देते हैं तो। मैं वहाँ ऊपर जाना चाहता था और कुछ मिनटों के लिए खड़े होकर मेरी पत्नी की छोटी सी यादगार करूंगा जो हमारा पहला और एकमात्र हनीमून था। आप जानते हैं कि हमें वहाँ पर जाने का कोई एक मौका मिला था और मैं उसे एक शिकार के दौरे पर लेकर जाता और मैं यहाँ फिर से यहाँ इस वर्ष इन भाइयों के साथ शिकार कर रहा हूँ और वो वहाँ नीचे टूसॉन में थी उन बातों को जारी रखने की कोशिश करते हुए। और मैंने वहाँ से होते हुए नीचे चलना आरंभ किया और मैं सोचते हुए जा रहा था। अब ये आपको बहुत ही अजीब सा लगेगा, मैं बहुत जल्दी करूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी सभा लगभग 10 मिनट में आरंभ होगी। और तो मैं साथ ही वहाँ से होते हुए नीचे चलकर जा रहा था और मैं सोचते जा रहा था, ओह सोचने की बात है, क्यों मेरी पत्नी ने मुझे कहीं भी जाने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। और आज सुबह कुछ मिनटों में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या घटित हुआ। मैं हर एक पुरुष को इसे सोचना चाहिए। मैं सोचता हूँ संसार में एक भी स्त्री ऐसी नहीं होगी जैसे मेरी पत्नी है। वह बस बहुत ही अच्छी स्त्री है, वह छोटी सी नेक चलन जो घर पर रहती है, वह हमेशा ही मेरे कपड़ों को तैयार रखती है। क्योंकि मुझे बाहर दौरे पर जाना पड़ता था, हर एक चीज को वो करती है। मैं उसे आकर कहता, जरा सा उसे चिढ़ाने के लिए कहता, मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम मेरी पत्नी हो? और इसी तरह से, और बच्चों को चुंबन करती, घुटने टेक कर और प्रार्थना करती और मुझ पर कपड़ों को पहनाती ताकि मेरे दिमाग को लगभग थोड़ा खुला रखे उस भीड़ और बातों से। और मैं मछली पकड़ने और शिकार करने निकल जाता, उससे दूर चला जाता और इन सारी बातों को अकेला अपने आप में उसे सहना पड़ता है। तब मैं सोचने लगा, तो हो सकता है जब मैं घर पर होता हूँ केवल एक ही चीज में हमेशा ही मैं एक ही चीज को जानता हूँ, वो परमेश्वर और उसका वचन है और मैं इस पर ही हमेशा बात करता हूँ। और साथ ही मैं वहाँ पर चलते जा रहा था और एक विचार मेरे सामने आया, कहा, तो हो सकता है वो तुम्हें जाने देती है क्योंकि इससे वे लोग दूर रहते हैं और इसी तरह से इत्यादि, और वह थोड़ा और शांतिपूर्वक रह सकती है जब तुम दूर जाते हो। और मैंने उन विचारों के साथ आगे बढ़ने लगा। मैंने इस तरह से किया और मैंने जब ऐसा कहा, मैंने अपने चेहरे की दाढ़ी को देखा जिसे एक हफ्ता हो गया था और वो आधे से भी ज्यादा सफेद हो गई थी। मैंने सोचा, बिल तुम जानते हो तुम कहाँ निकल गए हो, तुम ठीक अब बाहर निकल गए हो, तुम बूढ़े होते जा रहे हो और तुम 50 के अंक को पार कर चुके हो। तो मैं बस यह सोच रहा था, अपने कंधे पर बंदूक लटकाए हुए जा रहा था, इसी तरह से चलते जा रहा था और अचानक ही कुछ तो घटित हुआ। ऐसा दिखाई दिया हर एक मूल तत्व में मैं फिर से लड़का हो गया था। मैं नहीं जानता कि मानसिक रूप से किस बात ने जगह ली थी या ये क्या था। और मैंने देखा मैं उसके सामने खड़ा हूँ और वो मेरे सामने खड़ी हुई है और वो वहाँ पर खड़ी थी, वो बिल्कुल उसी तरह से थी जब मैंने उससे विवाह किया था। और मैंने अपनी बंदूक को नीचे रखा और मैं अपनी आंखों को मलने लगा। मैंने उसकी ओर देखा और उसने अपनी बाहों को इस तरह से रख दिया और मेरी ओर देखा। मैंने अपने सिर को ऐसे झुका लिया क्योंकि मैं ठीक वहाँ ऊपर जा रहा था एक छोटी यादगार के लिए जो हमारे विवाह की सालगिरह थी। उन पेड़ों के पास मैं खड़ा था, कुछ छोटे पेड़ों का झुंड वहाँ पर था, जहरीले सांप थे बिल्कुल उसी तरह के वहाँ ऊपर उत्तर के जंगलों में थे जब हम वहाँ एंड्रियोंग डेस्क में गए थे। और मैं हमेशा ही वहाँ ऊपर जाता हरेक अक्टूबर की 23 तारीख को जब मैं वहाँ ऊपर था और वो वहाँ पर थी। और मैं अपनी बंदूक को नीचे रखकर बैठ गया, वहाँ देखने लगा और एक मिनट के लिए रुक गया और मैंने सिर को नीचे किया। मैंने पीछे मुड़कर देखा और वो अब भी अपने बाहों को फैलाए हुए खड़ी थी। और मैंने सोचा मैंने सचमुच अपने दिमाग को नहीं खोया है। मैंने फिर से देखा और मैंने सोचा ये ऐसा क्यों होगा। यहाँ पर मैं था एक नौजवान पुरुष और मैंने अपने हाथों को देखा और मैंने कहा मैं प्रभु मेरी संसार में जिम्मेदारी है कि आपका संदेश लेकर आऊं। निश्चय ही यह मेरे साथ कुछ तो हुआ है। और मैंने फिर से देखा और यह धुंधला होता चला गया और मैंने अपनी बंदूक उठाकर अपने कंधे पर रखा और मैंने कहा हो सकता है कि आप मुझे इसका कारण बता रहे हैं, इससे उसका हृदय टूटता है जब मैं आकर और बाहर शिकार करने और इस तरह की बातों के लिए जाता हूँ। लेकिन जब मैंने चलना आरंभ किया मैंने अपनी टोपी को फिर से निकाला। मैंने कहा परमेश्वर मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर हैं, मेरे मन में कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर हैं और मैं आप पर विश्वास करता हूँ, हर एक वचन को। आप ही उस सूरज को चमकने को लगाते हैं जो वहाँ मेरे पीछे है। आप ही वो एक हैं जो इन चीजों को करते हैं। आप एक सृष्टि करता है। मैं इतना धीमा रहा हूँ, ये ऐसा दिखाई देता है कि मैं डर के रुकता हूँ। मैं डरता हूँ मैं कुछ तो गलत कर दूंगा। मैंने कहा वहाँ पर एक ही चीज है जिसे मैं आपको करने के लिए कहूँगा, मेरे हृदय के बोझ को ले लीजिए। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो अब मैं और अंगीकार करने की कोशिश करूँ, क्योंकि 5 वर्षों से मैंने आपको लगातार इसके लिए पुकारा है। मैंने क्या किया है मुझे बताएं कि यह क्या है। और मैं उसके बाद पहाड़ी पर थोड़ा ऊपर चलकर गया, ठीक वहाँ नजदीक जहाँ मैं कुछ मिनटों के लिए खड़ा होने जा रहा था, केवल अपनी पत्नी के लिए प्रभु को धन्यवाद देने और एक सफल विवाह के लिए जिसे परमेश्वर ने हमें दिया था। और इन वर्षों में वो प्रेम एक दूसरे के प्रति और हमारे बच्चों के लिए जो हमारे पास था, और मैं से हर एक अक्टूबर की 23 तारीख को करता हूँ। और वहाँ पर छोटा सा जहरीला सांप लगभग 10 इंच मोटा जो लगभग इस तरह से ऊपर आ रहा था और निकल आया, जो एक तरह से एल आकार में था और ऊपर चला गया। और जैसे ही मैं ऊपर पहाड़ी पर चलकर जा रहा था मैं बहुत ही थक गया और मैं बस उस पेड़ के सहारे इस तरह से बैठ गया और मैं कुछ तो पत्तियों पर थपथपाने की आवाज को सुन रहा था कुछ मिनट के लिए। अब पत्तियां सूख गई थी कुछ समय पहले। मैं वहां से लगभग 300 या 400 यार्ड चलकर गया था और मैंने देखा और मेरी खुद की आंखों से पानी बहकर नीचे गिरने लगा था मेरी सफेद दाढ़ी में से होते हुए और ये जमीन पर गिरने लगा। मैंने कहा ओ परमेश्वर मैं कितना एक हारा हुआ हूँ। और मैं वहाँ पर उस अवस्था में खड़ा हुआ था। मैंने कहा मैं भरोसा करता हूँ कि आप उसके लिए दयावंत होंगे। मैंने कहा मैं योग्य नहीं हूँ कि आपसे दया के लिए मांगू। मैंने कहा किसी दिन मैं जानता हूँ मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे जाना होगा प्रभु। और मैं अंदाजा लगाता हूँ लोग सोचते होंगे ये संकी है, लेकिन मैं परमेश्वर को उन स्थानों पर ढूंढता हूँ, यही जहाँ पर वो मेरे लिए वास्तविक होता है। ये बस उतना ही वास्तविक है, ये ठीक यहाँ पर है और खुले रूप से और कुछ थोड़ा है, तो इसलिए देखें आप सब एक भाग को। वहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि मैं उसके साथ अकेला खड़े होकर किसी और से नहीं लेकिन उससे बात कर रहा हूँ। और जब मैं वहाँ पर खड़ा था मैंने झाड़ियों को टूटते सुना और मैंने इस तरह से अपने सिर को ऊपर किया। मैं अब एक लाल कमीज को पहने हुआ था और एक लाल पट्टी मेरी टोपी के चारों ओर थी। एक लाल रुमाल उन पश्चिमी टोपियों के चारों ओर लपेटा हुआ होता है। और मैंने देखा और यहाँ पर ठीक मेरे पास 2 या 3 हिरण खड़े हुए थे जो तभी वहाँ पर चलकर आए मेरे उस लाल रंग की ओर। वे जो सारे वहाँ पर गोलीबारी कर रहे थे, वे जो 100 लोग ऊपर थे, मैं सोचता हूँ उन्होंने मेरे ख्याल से उन पर 40 बार गोलियां चलाई, क्योंकि निश्चय ही वे हिरण तभी अब बिखर गए होंगे। लेकिन वे भागे नहीं, वे सिर्फ खड़े होकर और मेरी ओर देख रहे थे। और बढ़िया शिकार, 2 पूरे वयस्क हिरणी के बच्चे और एक बड़ी मादा हिरणी। और किसी ने तो मुझसे कहा वहाँ पर एक हिरण भाई इवांस के लिए है और एक भाई वेल्श के लिए और एक मेथोडिस्ट प्रचारक के लिए है। वहाँ पर बिल्कुल वैसा ही है जिसे परमेश्वर ने तुम्हें अभी दिया है। वह दूर नहीं जा सकते हैं, उनके लिए निकलने का कोई मार्ग नहीं है। मेरे ठीक वहाँ कंधों पर बंदूक टंगी हुई थी और इससे पहले वो पीछे की ओर मुड़ सके मुझे उन तीनों को मारना था। देखो इस तरह से, इससे पहले वहाँ से जरा भी हिल सके वे अभी मेरे हाथों में थे। और मैंने सोचा वहाँ पर वे हैं, केवल 3 ही हैं, उनको यहाँ इस घाटी पर से नीचे लुढ़काना आसान है और फिर ठीक वहाँ लाद कर बाहर ले जा सकते हैं। और मैंने सोचा यह बहुत ही आसान होगा, वहाँ पर 3 हैं, फिर हम वहाँ से उठाकर वापस घर जा सकते हैं, उन पहाड़ों से बाहर निकल जाएंगे। और जैसे ही मैंने उन्हें वहाँ पर देखा वे खड़े होकर मेरी ओर देख रहे थे, बस शांतिपूर्वक लगभग 15-20 यार्ड की दूरी पर थे। तो मैं ऐसे ही वहाँ पर खड़ा रहा। और मैं नहीं जानता कि आप लोगों ने हिरण का शिकार किया है या नहीं, लेकिन वे अलग ही होते हैं। जब वे नहीं, वह निश्चित नहीं होते हैं, वे अपने पैरों को इस तरह से जमाएंगे जाते हुए और फिर उन्होंने मेरी ओर देखा। मैंने सोचा तो वे वहाँ हैं, बस केवल एक ही चीज है, मैं अपनी बंदूक को उन पर चलाऊं और वे खत्म हो जाएंगे। और फिर मुझे याद आया, मैंने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की थी कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, और मैं याद कर रहा था। मैंने सोचा नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, यह ठीक नहीं है, मैंने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की है कि मैं ऐसे नहीं करूंगा। और जब आप एक प्रतिज्ञा को करते हैं, आप उसके साथ बने रहें, परमेश्वर आपसे यही अपेक्षा करता है। और वहाँ मैंने सोचा तो वह बस पूरी तरह से मेरे हाथों में है, लेकिन फिर भी मैंने उससे प्रतिज्ञा की है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने कहा, चली जाओ माँ, अपने बच्चों को लेकर और उस जंगल के अंदर चली जाओ और अपने आप में आनंद करो, मैं भी इसे प्रेम करता हूँ। तुम मेरे हाथों में हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और वे थोड़ा और नजदीक आ गए। ओह, यह हिरण के लिए कैसी विचित्र बात है। और वे मेरी ओर देखकर, आप जानते हैं, और उन्होंने अपने सिर को घुमाया, और मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था, लाल कपड़े पहने हुए, मेरे हाथों में खड़ी बंदूक थी। और वे चलकर और मेरे बहुत ही नजदीक आ गए, इतना तक कि उन्हें लगभग मैं उन्हें अपने हाथों से खिला सकता था। और वहाँ उन्होंने यहाँ वहाँ महक लिया, कुछ क्षणों के लिए वापस मुड़कर थोड़ा सा पीछे हटने लगे और रुक गए, फिर से वापस आए। कोई तो मुझसे ये बार बार कहते जा रहा था, वे ठीक तुम्हारे हाथों में है, वे ठीक तुम्हारे हाथों में है, प्रभु ने उन्हें तुम्हारे हाथों में दिया है। मैंने कहा, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा की है, मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि ऐसा नहीं करूंगा। तभी फिर मैंने सोचा, तुम जानते हो, एक समय दाऊद वहाँ उसके पास लेटा हुआ था, जहाँ वो योआब लेटा हुआ था, और या जहाँ पर वो शाऊल लेटा हुआ था। और योआब ने उससे कहा, प्रभु ने उसे तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है, लेकिन उसने कहा, परमेश्वर उसके अभिषेकित को छूने के लिए मना करता है। देखो देखो, आपको अवश्य ही देखना है जब आप एक प्रतिज्ञा को करते हैं। और फिर मैंने कहा, मैंने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की है कि इसे नहीं करूंगा, इसलिए मैं इसे नहीं करूंगा। मैंने कहा, माँ, अपने बच्चों को लेकर जंगलों के अंदर चली जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मेरे हाथों में हो, तुम कहीं नहीं जा सकते, यदि तुम जाते थे तो, लेकिन मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, जंगलों में चले जाओ। और वे फिर से वहीं वापस आ गए, ठीक मेरे आसपास, और मैं वहां पर खड़ा था। और मैंने सोचा, ये क्या है, यह बहुत ही अजीब सी बात है। मैं एक प्रकृति को पसंद करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं परमेश्वर को प्रकृति में देखता हूँ। उस सूर्य का डूबना और उगना, यह एक मृत्यु है, जीवन है, वो दफनाया जाना वह मृत्यु है, और फिर से पुनरुत्थान, हर एक चीज, जैसे वे पेड़, कैसे अय्यूब ने कहा कब्र में छिपने के बारे में, वह मुझे एक पवित्र स्थान में रखता है। और देखो, वह जीवन का सार पेड़ को छोड़ देता है और जड़ों की कब्र के अंदर चला जाता है, और वापस वसंत के मौसम में ऊपर आ जाता है, जो पुनरुत्थान है। हर एक चीज जीवन और पुनरुत्थान के बारे में बताती है। और जब मैं वहाँ पर खड़ा हुआ उनको देख रहा था, वे नजदीक और नजदीक आ रहे थे। फिर वह वापस मुड़कर और जंगलों के अंदर चले गए, और मैं वहाँ पर ऐसे ही खड़ा रहा, बस जैसे आश्चर्यचकित होकर। और जब वे चले गए, उस आवाज ने मुझसे फिर से कहा, यह सूर्य मेरे पीछे की ओर चमक रहा था, कहा, तुमने अपनी प्रतिज्ञा को याद किया, क्या तुमने नहीं किया? मैंने कहा, हाँ प्रभु, मैंने अपनी प्रतिज्ञा को याद किया, मैं जानता हूँ कि यह आप ही हैं, मैं आपको नहीं देख सकता हूँ प्रभु, लेकिन आप यहाँ कहीं पर तो हैं। मैंने कहा, मैं आपको नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं आपकी आवाज को सुनता हूँ, मैं जानता हूँ आप यहाँ पर हैं। कहा, तुमने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया है, तुमने अपनी प्रतिज्ञा को याद किया है, मैं भी अपनी प्रतिज्ञा को याद करूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। ओह प्रभु, मैंने तब से लेकर ऐसा महसूस नहीं किया है। मैं पहाड़ से नीचे उतर कर आया, सारे दोपहर को दर्शन के बाद दर्शन दिखाई दिए जो जगह ले रहे थे। मैं नीचे आ गया, ऐसा दिखाई दे रहा था कि तब से लेकर हर एक चिन्ह भिन्न हो गई थी, वो एक बोझ चला गया था। सेवकाई के विषय जब पहले मेरे पास आई, जो किसी व्यक्ति के हाथ को लेकर महसूस करने के द्वारा थी कि यह क्या था, जीवन जो उसमें था, और हम इसे जानते हैं, ये कैसे होता गया। एक रात कैलिफोर्निया में मैं मेलेकी के परिवार के साथ बैठा हुआ था, भाई मोरे याद है, और भाई ब्राउन और मेलेकी परिवार था, और वो छोटी महिला जो बालक के जन्म से पहले उसे मिल्क लैग होने जा रहा था, जो प्रसव के बाद पैरों के नसों में दबाव में दर्दनाक पीड़ा होती है, और मैंने अपने हाथों को उस पर रखा था। मैंने कहा, यहाँ पर है ये, तुम इसके कंपन को देख रहे हो, देखा? और मैंने कहा, तुम्हें वो मिल्क लैग नसों से दबाव से जो दर्दनाक पीड़ा है होने जा रही थी, मैंने कहा, इसने तुम्हारे अंदर कार्य करना आरंभ कर दिया था, और वो लगभग अपने जीवन को गवा चुकी थी। और भाई मेलिकी ने मुझसे कहा, भाई ब्रैनम, आपने ये कैसे किया? मैंने कहा, मैं नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, कि यह कैसे है, यह परमेश्वर है। और मैंने अपने हाथों को इस तरह से रखा, मैंने कहा यहाँ पर मेरी पत्नी है, मैं जानता हूँ उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, अपने हाथों को मेरे हाथों के ऊपर रखो प्रिय। और उसने ऐसा किया और वहाँ पर एक ट्यूमर का कंपन हुआ जो उस स्त्री संबंधी था। और मैंने कहा हृदय प्रिय, तुम्हें एक ट्यूमर है प्रिय उस स्त्री ग्रंथि के अंदर। और उसने कहा मुझे कुछ असर महसूस नहीं होता है। मैंने कहा हृदय प्रिय यहाँ पर, ये मेरे हाथों पर है, अपने हाथों को ऊपर करो। उसने अपने हाथों को ऊपर किया और इसे फिर से नीचे कर दिया, इसे देखो। तो जब हम बाहर गए थे, हम वापस घर आए, हमारा एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर मित्र है, मैं उसके साथ स्कूल जाता था। हम उसे वहाँ निरीक्षण के लिए लेकर गए, कहा बिली उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है, कहा यह बिल्कुल ठीक है, नहीं वहाँ कोई भी ट्यूमर नहीं है। मैंने कहा मैं तुम्हारे शब्द पर संदेह नहीं करना चाहता हूँ, देखो क्योंकि तुमने इसकी जांच की है, लेकिन वहाँ पर ट्यूमर है। हर एक जन को 4 या 5 वर्षों से ऊपर जब मुझे अपने शारीरिक जांच के लिए जाना होता है, जब मैं समुद्री पार जाता वह मेरे साथ शारीरिक जांच के लिए जाती थी, और जब उसने जांच को किया था इसे कभी नहीं देखा। और लगभग 2 वर्ष पहले मैं एक दिन आया, अब मुझे सारी सच्चाई को बताना अवश्य है। देखो आप किसी भी बात को छोड़कर ऐसे ही आगे नहीं जाना चाहते, आपको पूरी सच्चाई को बताना ही है। और मैंने आपको मेरी पत्नी के प्रति मेरे प्रेम को व्यक्त किया है, लेकिन फिर भी हमें उन बातों को देखना है, मैं आपको सच्चाई को बता रहा हूँ। स्वर्गीय पिता जो अभी यहाँ पर मेरा गवाह है जानता है कि यह सच्चाई है। ओह घर पर यह किस तरह से है, बस ऐसा वैसा हर एक बात, छोटी खराब बात, उससे जीवन बदल जाता है इस मासिक धर्म बंद होने के समय पर। और कुछ वर्षों से लेकर लगभग 2 वर्षों से जब हमने एक शारीरिक जांच को किया, तब डॉक्टर ने उसके बाएं गर्भाशय पर एक ट्यूमर को पाया। ये लगभग एक अखरोट के आकार का जितना बढ़ चुका था। उसने कहा मुझे फिर से जांच करने दीजिए भाई ब्रैनम, कहा लगभग 3 महीने तक यह अगर बढ़ता रहा यह बाहर निकल आएगा। तो फिर हम, लेकिन इससे ठीक पहले मुझे आपको कुछ बताना है, मैं ये भूल गया था। एक दिन जब मैं अपने घर पर आया और मैं कुछ तो करने के लिए आया था और वापस मुड़कर और जाने लगा, और मैंने कहा, पत्नी ने कहा क्या तुम मेरे साथ वहाँ नीचे शहर में चलोगे बिल, और मैंने कहा अभी नहीं प्रिय। और उसने कहा हम बैकी का क्या करें, ऐसे ही कुछ कुछ बातें। मैंने कहा तो ठीक है प्रिय, मैं इस वक्त नहीं जानता कि क्या करना है। और वहाँ कुछ तो बातें ऊपर आने लगी और वह बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई थी और वह खुद को संभाल नहीं पाई। कुछ लोग पूरी रात घर पर थे, और उससे पहले जैसे पिछली रात को यहाँ तक सुबह के 1 बजे तक यहाँ पर लोग घर के आसपास और खिड़कियों के आसपास होते थे, और हर इसलिए तब वो वास्तव में परेशान हो गई थी। और उसने कुछ तो चिड़चिड़ा कर मुझसे कहा, और उसे यह नहीं कहना चाहिए था, समझे। उसने कहा तब बिल तुम हमेशा ही बाहर चले जाते हो और मुझे इन बच्चों को खुद संभालना होता है। उसने कहा तुम यहाँ कभी नहीं होते हो, हम कभी हमारे निर्णय को एक साथ नहीं ले सकते हैं, या तो तुम बाहर रहते हो चले जाते हो। और उसने रोना शुरू किया और अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर दिया। ठीक तभी मैंने कहा बेचारी छोटी स्त्री, मैंने कहा ओह प्रभु मुझे ऐसा, और मैं बाहर चला गया। और इसने कहा दूसरा इतिहास 22 पढ़ना, यह तब था जब मरियम ने मूसा को फटकारा उस एक इथोपियन लड़की से विवाह करने पर, ऐसा करने से बेहतर होता उसका पिता उसके मुंह पर थूक देता। और मैं वापस चला गया, मैंने कहा हृदय प्रिय तुमने गलत बात को कहा है, और वो रो रही थी। मैंने कहा तुमने गलत बात को कहा है प्रिय, परमेश्वर तुम्हें इसके लिए दाम चुकाने को लगाएगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैं पूरी तरह से अपने आप में टूट गया हूँ, तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए था। और उसने कहा तो बिल मैं बहुत ही टूट चुकी हूँ, और मैं मुड़कर वापस चलने लगा क्योंकि मैं जानता था वह इसे लेने के किसी मूड में नहीं है, इसलिए मैं वापस चला गया। और अगली जांच लगभग उसके 1 महीने बाद हुई, वहाँ पर ट्यूमर दिखाई दिया। पिछले वर्ष यहाँ ये फिर से आता है, जब उसने फिर से कोशिश की अब यह बढ़कर एक नारंगी के आकार का हो गया था। डॉक्टर ने कहा इसे और ज्यादा वहाँ पर बढ़ने मत दो, तुम्हारा ऑपरेशन होना अवश्य है, यहाँ पर एक तेजी से बढ़ता हुआ ट्यूमर है जो प्राण घातक है, यदि यह अधिक फैल गया और जाकर बगल में अटक गया तो तुम क्या करोगे। मैंने कहा डॉक्टर हमारा परमेश्वर में विश्वास है, मैंने इसे कभी कलीसिया को नहीं बताया या कुछ नहीं, मैंने इसे बस होने दिया, हमने प्रार्थना करना आरंभ किया। और मैंने कहा प्रभु परमेश्वर कृपया हमारी सहायता कीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी सहायता करेंगे। और आगे इसी तरह से ट्यूमर बढ़ता और बढ़ता गया। फिर जब हम टूसॉन जाने के लिए निकले, हमारे घर के डॉक्टर ने वहाँ पर एक मित्र डॉक्टर को कुछ शब्द भेजे, कहा यदि तुम्हें इस ट्यूमर को श्रीमती ब्रैनम में से बाहर निकालना अवश्य ही है, कहा यदि तुम इसे नहीं निकालोगे ये प्राण घातक हो जाएगा। उसे बताया, कहा ट्यूमर पहले से बढ़ चुका है, एक वर्ष में ही यह अखरोट के आकार से लगभग एक बड़े मौसमी के आकार का हो गया है, यह बहुत ही बड़ा हो गया है। यह वहाँ पर था जो उसके बगल से बाहर की ओर इस तरह से निकल गया था, और एक दिन उसे जाकर निकालना था। मैंने कहा कोशिश करो, हमने प्रार्थना की, हम रोए, हमने विनती की, हर एक चीज को किया, कुछ भी बात ने जगह नहीं ली। तब वो जाने लगी, आखिर जाना था, आइए देखें कल क्या हुआ। जी हाँ, कल वो आखिरी बार डॉक्टर के पास गई। मैंने कहा तो मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है, लेकिन हमें संभवत मान लेना होगा, और फिर प्रिय तुम्हें बस मान लेना होगा ताकि इसे बाहर निकालें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा होता जा रहा है, हमारा विश्वास काफी नहीं है। इसलिए परसों के दिन मेरे निकलने से पहले ये जानते हुए उसने कहा, मुझे आपकी उस रात को भाई जैक की सभा होने तक फोन मत करना, तब मुझे बताना आपकी सभा किस प्रकार की हुई थी और वहाँ शेवरेपोर्ट में लोग कैसे हैं। तब कहा मैं तुम्हें बताऊंगी डॉक्टर ने क्या कहा। मैंने कहा अच्छी बात है प्रिय, और मैंने फोन को रख दिया। कल और परसों घर में से जब मैंने वहाँ के लिए निकलना आरंभ किया और मैं अंदर गया, और हमेशा ही जब हम बाहर निकलते हैं सारे बच्चे और हम सब एक साथ मिलकर और वहाँ उस कमरे में घुटने में जाकर और प्रार्थना करते हैं, और प्रभु, हम प्रभु से कहते, जब मैं बाहर विदेशों में जाता हूँ मैं कहता हूँ प्रभु यीशु मेरे परिवार का ख्याल रखना, और वे मेरे लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरी सहायता करे जिससे हम फिर से एक बार मिल सकें। तब सारे बच्चे रोना आरंभ करते और इत्यादि, आप जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यह किस तरह से होता है। राष्ट्रपति कैनेडी की गोलीबारी से हत्या के बारे में बात किया जाए, मुझे बहुत बार सतर्क किया गया था अवरक्त दूरबीन की गोलीबारी से, और हो सकता है जो रात के समय 200 या 300 यार्ड की दूरी से गोलीबारी की जाती थी, वे उस खोजी दूरबीन के जरिए से रात को भी वैसे ही देख सकते हैं जैसे वो दिन को देख सकते हैं। मैं कैथोलिक देशों में रहा हूं, जहां पर उग्रवादी और आदि लोग होते हैं, वहां मेक्सिको में जहां पर उन्हें वापस भेज दिया जाता है, और शब्दों को भेजते हैं टेलीग्राम के संदेशों को जिसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है, हम आज रात आपको मिलेंगे और इत्यादि इसी तरह से, और अंदर और बाहर जाते हुए और मेरी राह को देखते रहते हैं, और हो सकता है मैं यहाँ किसी समय पहुँच जाऊँ, कोई बात है, लेकिन मेरे पास कुछ तो है, देखो जब समय आता है जो मुझे संभालता है। और फिर जब मैं वापस निकलने लगा, उस दिन की बात है, बस केवल मैं ही अकेला था और मैं घुटने पर गया, परसों की बात है, और कमरे में घुटने पर गया, और मैंने यहाँ वहाँ देखा, मैं वहाँ पर कुछ दिनों से अकेला रह रहा था, घर पर कोई नहीं था, और मैंने कहा स्वर्गीय पिता मैं प्रार्थना करता हूँ अब आप दयालु पूर्वक होंगे और मेरी सहायता करेंगे, मैं वहाँ शिवरीपोर्ट में जा रहा हूँ हर एक उस बात को करने जो मैं कर सकता हूँ ताकि आपके राज्य के लिए सहायता हो। मैंने कहा कितनी बार मैं और मेरी पत्नी इस तरह से इस कमरे में घुटने पर आए हैं, हम प्रार्थना करते हैं, और आज मैं यहाँ पर उसके लिए बिल्कुल अकेला हूँ। और मैंने कहा कल वो अंदर जा रही है और शायद मैं अपनी सभाओं को नहीं खत्म कर पाऊंगा, और उसे हो सकता है कल उस बड़े ट्यूमर के लिए अस्पताल ले जाना पड़े, और जिसे हमने मांगा है कि आप इसे निकाल दें। यह बढ़ता गया और बढ़ता गया है, इतना तक कि इसे निकालना अवश्य है, और मैंने कहा मैंने आपसे विनती की है, और मैंने कहा प्रभु यदि उसने कुछ गलत कहा है, जब वो वहाँ थी मैं टूट गया था, यदि उसने कुछ गलत कहा है, मैंने कहा प्रभु जरा सोचे, उसने कभी एक बार भी ना ही उसने कभी एक बात भी आपकी सभाओं पर जाने के लिए मुझसे कहा है। मैंने कहा आप वह हमेशा ही मेरे कपड़ों को धोकर और तैयार करती और मेरे हाथों को पकड़कर और पुकारती और प्रार्थना करती और कहती यदि मैं कुछ कर सकती हूँ ताकि प्रभु के लिए कुछ सहायता हो। और मैंने कहा उसकी अवस्था की ओर देखे प्रभु और इसे ना करें, कृपा ना करें प्रभु, नहीं कृपा ना करे प्रभु। और मैंने कहा परमेश्वर उसकी सहायता करे, मैं ये प्रार्थना करता हूँ आप उसके लिए दयनीय होंगे, और यदि उसे ऑपरेशन में से होकर जाना है उसकी उसमें सहायता करना। प्रभु यदि अब मैं उसे खो देता हूँ मैं नहीं जानता मुझे क्या करना है, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और उन बच्चों को बढ़ाना है और मैं क्या कर सकता हूँ, उस पर दया करे प्रभु, आप जानते हैं मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। और मैंने कहा मैं इतना ही प्रार्थना करता हूँ कि आप उसकी सहायता करेंगे, और जैसे ही मैं प्रार्थना कर रहा था मैंने कुछ तो बोलते हुए सुना अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, और मैं केवल प्रार्थना ही करते जा रहा था क्योंकि मैंने सोचा हो सकता है यह मेरी कल्पना हो। और जैसे ही मैं प्रार्थना करता गया, किसी ने तो कहा अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, और मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया और ऊपर की ओर देखा, और वो मसीह की तस्वीर जो वहाँ पर थी। मैंने कभी भी सालमन की तस्वीर पर ध्यान नहीं दिया, मैं हाफमैन की तस्वीर को पसंद करता हूँ, जो 33 वर्ष का सर है, आप जानते हैं। और मेरे पास उसकी एक बड़ी तस्वीर है, क्योंकि जब मैंने उसे उस दर्शन पर देखा था, वह बिल्कुल वैसे ही था जैसे वह दर्शन में दिखाई दिया था। और वहाँ पर यह थी, मैंने उसे वहाँ पर टंगाया था, क्योंकि इस तस्वीर में वह ठीक मेरी ओर देख रहा था जब मैं प्रार्थना कर रहा था। और मैंने ऊपर की ओर देखा और उस तस्वीर की ओर देखा और सब जगह यहाँ वहाँ देखा, और मैंने सोचा यह क्या था, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। मैंने सोचा तो ठीक है, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यह वही आवाज थी जिसने वहाँ उस रात को पहाड़ी पर मुझसे बात की थी, वही एक जो हमेशा करती है। मैंने कहा, प्रभु परमेश्वर, क्या ये आप हैं जो आप अपने सेवक से बातें कर रहे हैं? उसने कहा, केवल शब्द को बोलो, वहाँ पर कोई भी ट्यूमर नहीं होगा। और वहाँ पर मैं थोड़े समय के लिए खड़ा रहा ताकि खुद को सही करूँ। यह आप में से बहुत लोग जानते हैं, और वे लोग जो इस भवन में हैं जानते हैं कि यह क्या था जो उसे था। मैंने कहा, तब मैं कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो जो ट्यूमर है उसे छोड़कर चला जाए, जो उसे बुरी तरह से तकलीफ दे रहा था और 3 या 4 दिनों से इसके साथ वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मैंने कहा, वह इसके निशान को भी नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभु मेरा परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जो उन तूफानों और आंधियों को रोक सकता है और उस समुद्र को डांट सकता है और इसे आगे ला सकता है, वह आकाश और धरती का सृष्टि करता है। और मैं उससे प्रेम करता हूँ और उस पर विश्वास करता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ अब वह समय नजदीक आ रहा है जब ये बातें वहाँ पर होंगी। और आप जो एक गिलहरी की सृष्टि कर सकते हैं और उसे अस्तित्व के अंदर ला सकते हैं और एक शत्रु को अस्तित्व में से बाहर निकाल सकते हैं। मैंने कहा, जब वो शैतान अपने आप को समुद्र में लपेट लेता है, क्योंकि वे हवाएं परमेश्वर की सृष्टि है, वो पानी परमेश्वर की सृष्टि है, लेकिन शैतान इसके अंदर चला जाता है, यही जो उसने किया है, और इस तरह एक लहर को समुद्र में उठाता है। मैंने कहा, आप इसे शांत कर सकते हैं, और आप उसे शांत कर सकते हैं, और मेरी पत्नी से ट्यूमर को निकाल सकते हो। और मैं यह कहता हूँ कि यह ठीक अभी हो चुका है, यह अब और नहीं दिखाई देगा, यह समाप्त हो गया है। मैं वहाँ पर भरोसे के साथ चला गया, अपने बेटे और बहू को बताया। हम यहाँ पर नीचे आए और पिछली रात्रि को, और यहाँ पर जल्दी से सभा को लेने के लिए निकल कर आया और वापस जाकर उसे फोन किया, और वह अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, मैंने उसे नहीं बताया था। और जब उसने फोन किया, वह बस बहुत ही खुश थी। उसने कहा, बिली, मुझे तुम्हें कुछ तो बताना है प्रिय। उसने कहा, वहाँ कहीं पर भी ट्यूमर का एक निशान भी नहीं रहा है, डॉक्टर ने कहा उसे वहाँ पर एक चीज भी नहीं मिली। उसने कहा, मैं बहुत ही खुश हूँ, और श्रीमती नॉर्मन और बहुत सारी बहनें यहाँ पर हैं, उनमें से 2 या 3 जो यहाँ इस कमरे में हमारे साथ थी। उसने कहा, डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे कहने का मतलब यह है, मैं नहीं समझ सकता हूँ। 1 महीना पहले वहाँ पर एक मौसमी के आकार का ट्यूमर था, और कहा, श्रीमती ब्रैनम, निश्चित रहो, वहाँ तुम्हारे अंदर ट्यूमर का अब एक चिन्ह भी नहीं है। यह प्रभु हमारा परमेश्वर है। एक धन्यवाद प्रदान करने का दिन। ओह, धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के उपहार के लिए, वो सर्वोत्तम उपहार जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। यह सच्चाई है, मैं स्वर्ग और आकाश की शपथ खाने पर विश्वास नहीं करता या किसी चीज की, लेकिन अपने हृदय पर बाइबल को रखते हुए, और परमेश्वर जिससे मैं प्रेम करता हूँ जानता है कि हर एक शब्द जो मैं आपको बता रहा हूँ सत्य निष्ठा से सच्चाई है। धन्यवाद प्रदान करने का दिन। जब मैंने सोचा कल मुझे या आने वाले कुछ दिन हो सकता है मुझे कोई सभा पर जाने के लिए निकलना पड़ेगा, मैं लोगों को वायदा भी नहीं कर सकता कि मैं घर पर वापस क्रिसमस के समय पर मेरे बच्चों के लिए आऊंगा ताकि क्रिसमस के लिए उन्हें वापस घर लाऊं। जानते हुए मेरे हृदय में कंपन हो रही थी कि एक ऑपरेशन मेरी पत्नी के लिए रुका था जो एक मौसमी के आकार के ट्यूमर के साथ थी, और वहाँ पर यह था। और वही परमेश्वर का वचन जिसने कहा, जो तुम चाहते हो कहो और यह उसी प्रकार से होगा। और मैंने कहा, वह ट्यूमर चला गया है, वे इसे अब कभी नहीं पाएंगे, और आज यह चला गया है। और सबसे अच्छे चिकित्सक और अच्छे डॉक्टर जो वहाँ इस टूसन एरिजोना के काम करने वाले हैं, जब कुछ दिनों पहले वहाँ पर एक बड़ा ट्यूमर इस तरह से था, और उसी डॉक्टर ने इसका कोई निशान भी नहीं पाया, और उसने इस तरह से एक खुले बयान को लिखा कि श्रीमती ब्रैनम के पास ट्यूमर का एक चिन्ह भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं। ओह परमेश्वर को धन्यवाद प्रदान करो, यह मेरे लिए धन्यवाद प्रदान करने का दिन है। ये जानकर इस सब के ऊपर है कि किसी दिन वह छोटा सा चेहरा जिससे मैंने वहाँ पर विवाह किया था, परमेश्वर की महिमा हो, किसी दिन ये बुढ़ापे के मृत्यु के निशान धुंधले हो जाएंगे और हम वहाँ पर नौजवानों के जैसे होंगे और अब और कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। और परमेश्वर का उपहार यीशु मसीह के जरिए से, जो पवित्र आत्मा का है जिसे हमने पा लिया है, जो हमें इसे देता है इस लंगर को। और आज इसकी ओर देखें मित्रों, आप उन एक धन्यवादित लोगों के बारे में बात करें, हमें सबसे अधिक धन्यवाद देने वाले लोग होना चाहिए, हर एक लोग जो संसार में है उनसे। चंगाइयों के अलावा, इन बातों के अलावा जो जगह ले रही है, ये क्या है? यह परम सत्य भरोसा है कि वही परमेश्वर उसी स्वभाव के साथ, उसी आग के खंभे के साथ, वही परमेश्वर का दूत, वही यीशु जो कल आज और युगानुयुग एक सा है, उन्हीं कामों को कर रहा है उसी सामर्थ्य के द्वारा, उसी नाम के जरिए से। क्या ही एक प्राण के लिए लंगर है, अटल और पक्का होने पाए। प्रभु परमेश्वर जो स्वर्ग का है, आप हर एक को बहुतायत से आशीष दे। आइए हमारे सरों को झुकाएंगे। प्रभु मैं बहुत ही आभारी हूँ, प्रभु मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ, मैं इसे व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। जब कुछ समय पहले वो स्तुति के गीत को गाया गया था और वे लोग उस गीत को गा रहे थे, मेरे हृदय में बस आनंद उमड़ पड़ा और वो गवाही मेरे हृदय पर आई। और अब स्वर्गीय पिता, आप जानते हैं ये बातें सत्य हैं, आप जानते हैं मेरे ये हृदय की गहराई से है और ये सच्चाई है। मेरे पास कोई कारण नहीं है प्रभु कि उन्हें कुछ नहीं बताऊं सिवाय उस सच्चाई के। और मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर की आज होने पाए, मेरा हृदय महसूस करने पाए कि इन सारे मसीह भाइयों और बहनों को यहाँ पर देखूं, जो मेरे भाई और बहन जो मसीह के बंधन में है, मेरे साथ आनंद करें धन्यवाद प्रदान करने के साथ, मेरी छोटे से सहयोग के लिए। धरती परमेश्वर की स्तुति करे, प्रकृति उसकी स्तुति करे, वो सब परमेश्वर की स्तुति करे जो सांस लेते हैं। और इन सारी बातों के लिए धन्यवादित हूँ जो महान समय हमारे पास है। प्रिय स्वर्गीय पिता, वहाँ पर मैं देखता हूँ कि छोटा लड़का उस एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, यहाँ पर कुछ और हैं जो बीमार और आवश्यकता में हैं, और बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हमारे प्राणों के लिए उद्धार के परमेश्वर हैं, आप परमेश्वर हैं जो सारी बीमारियों और पीड़ाओं से चंगाई देते हैं। और आप अब भी इन सारी गवाहियों के साथ, ये तो केवल एक या दो ही हैं, जबकि ये हजारों की संख्या में है, जिसे आपके नम्र दास ने आपको उस कार्य को करते हुए देखा है, उस पर कहीं पर भी इसमें दोष नहीं है। और हम जानते हैं कि आप अभी भी यहोवा यीरे हैं और आपने चंगाई के लिए उस बलिदान का पहले से प्रयोजन कर दिया है। उसी परमेश्वर ने मेरी पत्नी के बगल से उस ट्यूमर को बाहर निकाला। आप बिल्कुल उतना ही ठीक यहाँ शेवरेपोर्ट में वो परमेश्वर है जैसे आप टूसान में थे, और फिर भी मैं उससे मीलों 200 मील उससे दूर था। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आपकी पवित्र उपस्थिति आज इस भवन को भर देगी उस चंगाई की सामर्थ से, जो यहाँ पर हरेक बीमार व्यक्ति को चंगा कर देगी, जिससे ये धन्यवाद प्रदान करने की आशीषें लगातार आवाज कर सके यहाँ से और वहाँ से सारे देश भर में, प्रभु कि आप कल आज और युगानुयुग एक से हैं। इसे प्रदान करें अनंत परमेश्वर। अब जैसे यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, अपने हाथों को एक दूसरे पर रखते हुए और प्रार्थना करें, अपने आप को एक दूसरे से विश्वास की एकता के द्वारा जोड़ें परमेश्वर की उपस्थिति में, और याद रखें कि आप में से हर एक जन सौभाग्यशाली है। परमेश्वर मेरा न्याय करेगा, मैंने आपको सच्चाई बताई है या नहीं, क्या ये कभी विफल हुआ है जो कुछ भी मैंने आपको बताया है, लेकिन जो घटित हुआ है, जैसे शमूएल ने उस समय कहा जब वो एक राजा को बनाने जा रहे थे शाऊल को, लेकिन उसने कहा क्या मैंने कभी आपको प्रभु के नाम से गलत बताया है, लेकिन जो पूरा हुआ है। क्या मैंने आपसे कभी मेरे भोजन के लिए पैसे मांगे हैं? नहीं शमूएल, लेकिन हम अब भी राजा को चाहते हैं, हम अब भी हमारे इस धरती के राजा को चाहते हैं। और शमूएल जानता था कि परमेश्वर उनका राजा था। मैं आज सुबह कहता हूँ लोगों, मैं आपके लिए गवाही को देता हूँ, क्या आपने परमेश्वर के दान को एक समय भी विफल होते हुए देखा है जिसके बारे में आज सुबह हमने पढ़ा है? नहीं श्रीमान, ये यीशु मसीह है यह विफल नहीं हो सकता है। विज्ञान ने इसे साबित किया है, कलिसिया इसे जानती है और वो ठीक अभी यहाँ पर है, ठीक इसी मिनट पर वो यहाँ पर है। और आपके लिए विश्वास एक ही चीज की कमी है, ताकि उस वचन को उठाकर और इसे अपने आप के लिए अभिषेक करें और वह आपको चंगाई देगा। और अपने हाथों को एक दूसरे पर रखते हुए परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से पुकारें और कहें, प्रभु परमेश्वर, धरती और आकाश के सृष्टिकर्ता, आप जो उस तूफान को रोक सकते हैं, 2000 वर्ष पहले आपने इसे किया और आप इसे ठीक फिर से करेंगे, और आप मेरी बीमारी को रोकते हैं, आप मुझे चंगा करते हैं, और मैं अपने पूरे हृदय में आपके प्रति आभारी हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर।